प्यारे दोस्तों, आज सुबह का सलाम। आइए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़े रहें। प्यारे खुदा, आज हम इस जीवन की दौड़ भाग में होते हुए थोड़े लम्हों अर्थात घंटे या जो कुछ भी तूने हमको दिया है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि तुझे धन्यवाद और तारीफ कर सके, ताकि तेरा संदेश प्रचार करें और तुझको और बेहतर जान सके। और इसी कारण से आज सुबह हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही कारण है कि खुदावन बहुत सारे लोगों ने अपने दिलों को तैयार किया है ताकि तेरी बात सुन सकें, और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। चाहे कैसा ही समय क्यों ना हो और चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो तुझ पर विश्वास करते हैं और उनके लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदा, हम तेरी जबरदस्त सामर्थ के लिए जो कि चंगाई के रूप में प्रकट हुई है तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे वचन के वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जब हमने इन गवाहियों को सुना तो हमारे हृदय बहुत उत्तेजना से भर गए, और बहुत सारे इंसानों के ऊपर जो बहुत सी परेशानियां और बीमारियां आईं, वो सब तेरे अनुग्रह और अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा और तेरे वादों के द्वारा सब छूट गए और चंगे हो गए। और वो सभी लोग यहाँ पर तेरी गवाही दे रहे हैं और तेरे नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, और उनके लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह के समय हम उस संदेश की ओर ध्यान देना चाहते हैं जो कि तूने हमें दिया है, और जैसे हम तेरे संदेश को पढ़ते हैं हमारी तुझसे उम्मीद और प्रार्थना है कि जब हम संदेश को पढ़ते हैं तो तू हमें उसमें से विषय दे, और हर बात में तेरी ही मर्जी पूरी हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से आप बैठ जाएं। और आज की सुबह ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलकर। भाई वुड्स, भाई रॉय रॉबर्टसन और बहुत सारे और भाइयों ने एक साथ मिलकर विश्वास योग्यता में होते हुए पिछले दो दिनों से अथक परिश्रम किया है ताकि इस भवन को एयर कंडीशन बना सकें, क्योंकि पिछले रविवार को आप लोगों को काफी तकलीफ हुई और उनके पास कलीसिया में थोड़ा सा धन था जिसके द्वारा से काम किया गया और आपको ये आराम पहुंचाया गया है। वो पैसा जो कि आप लोगों ने धन्यवाद के स्वरूप दिया था ताकि आप आराम से बैठकर संदेश को सुन सकें, और आज पहले के मुकाबले काफी अच्छी ठंडक है। सो हम खुदा के और आपके आभारी हैं इस अच्छे मौके के लिए। मैं खुश हूँ भाई रॉय बॉर्डर्स के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि आज सुबह पीछे ही रहें। मैंने उन्हें बताया कि आप इन कुर्सियों पर बैठ जाएं जिस पर कुछ और प्रचारक बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप सब भाई बॉर्डर्स को जानते हैं कि वो मैदान में कार्य करने वाले एक भाई हैं। तो भाई बॉर्डर्स और बहुत सारे प्रचारक भाइयों और दोस्तों को यहाँ पाकर हम बहुत खुश हैं। सारे सप्ताह मैं सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा, और जब रविवार को यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि मैं हर एक प्रचारक भाई को और दोस्त को यहाँ पर मिलूंगा और पहचानूंगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो संदेश सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि बाकी सारे ही बातें करीब करीब भूल जाते हैं। और अब मुझे एरिजोना वापस जाना है, और अगले सप्ताह में सोमवार को मुझे तूसान जाना है ताकि अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आ सकूं, और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, और मेरी पत्नी को वहां जल्दी जाना होगा लगभग दो सप्ताह पहले, इससे पहले कि स्कूल खुले बच्चों के नामों का पंजीकरण होना है, और उसके बाद फिर मैं यहां वापस लौट करके आऊंगा। और अब ये मेरा छुट्टी का समय है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई से प्रचार किया है, और यदि खुदा की मर्जी रही और बाहर से कोई खास बुलावा नहीं आया तो ये वो मौसम है जिसमें मैं आराम करता हूँ, छुट्टी लेता हूँ और शिकार पे जाता हूँ। लेकिन यदि खुदावन मुझे बुलाए और कुछ और काम लेना चाहे तो फिर बात दूसरी है जो आज मैं नहीं जानता। खुदा सदैव पहले स्थान पर है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो पहले स्थान पर ही रहे, और आप भी चाहते हैं कि खुदा पहले नंबर पर रहे। और यदि कोई पक्का बुलावा ना आया और खुदावन की मर्जी रही तो अगले दो एक महीनों में मैं कुछ करना चाहता हूँ, शिकार जाना चाहता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा आराम दे सकूं। आप नहीं जानते और संसार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मैं किन हालातों में होकर गुजरता हूँ, और इसमें बड़ा बोझ होता है और ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने भी अपने चेलों से कहा जब वो चलते हुए जा रहे थे कि मेरे साथ यहाँ जंगल में आ जाओ और थोड़ा सा विश्राम करो। और जैसे जैसे मेरे दिन विशेष रूप से इस धरती पर गुजरते चले जा रहे हैं, मैं इस थकावट को और ज्यादा महसूस करता हूँ। और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, आप जानते हैं कि इसका एहसास होता है, और आपके पास्टर साहबान भी आमीन कह रहे हैं, और इस बात से ये आभास होता है कि अब हम लड़के नहीं रहे बल्कि 50 वर्ष हम पार कर चुके हैं और अब हमको थोड़ा सा समय चाहिए। हम उन सभी गवाहियों के लिए खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं जो कि अभी अभी हमने सुनी है। कल मेरी पत्नी मिसेस वुड्स के यहाँ थी, जहाँ पर थोड़े से लोग अलबामा से आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी और प्रभु ने किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को चंगाई प्रदान करी और बहुत सारे कार्य किए। और भी बहुत सारी बातें हैं, और यदि सबका बयान करने लग जाऊं तो बहुत सारा समय लगेगा। और उसके साथ ही मुझे एक बात और ध्यान रखना है, मैं विश्वास करता हूं कि बहन लार्सन पिछले 2 रविवारों से अपने छोटे से बच्चे को लेकर यहां आ रही हैं। मुझे बिल्कुल पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो अपने पोते को यहां लेकर आई हैं। और ये बहन शिकागो से आई हैं और हमारे प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती रही हैं और अपने बच्चे का समर्पण कराना चाहती हैं, और हम इसकी सराहना करते हैं। और शिकागो से ये एक छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ समर्पण कराने लाई हैं, और यद्यपि उस बच्चे को यहाँ लाने में समय लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी ये बहन बहुत ज्यादा शौक रखती हैं कि उनका बच्चा प्रभु को समर्पित किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि बहन लार्सन, जब तक कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उस छोटे बच्चे को लेकर सामने आए ताकि उसका समर्पण किया जा सके। और जब तक वो बहन तैयारी कर रही हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संदेश जो कि आज मैं प्रचार करने वाला हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त संदेश है जिसको तैयार करने में मैं कल रात तक लगा रहा। और पिछले सप्ताह मैं रोजाना ही जो बुलावे आते थे उनसे निपटने के बाद अकेला अलग जाता था, खुदावंत से मैं पूछता था कि मेरे अंदर आप कोई संदेश दीजिए जो कि इस समय के लिए उचित हो। और इतना सारा समय लगाने के बावजूद भी जब मैं उठा तो मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा दिमाग वैसा का वैसा ही खाली था। और कल जबकि मैं तहखाने में गया, मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और मैं नीचे तहखाने में रहा। मैंने वहाँ बैठ करके बाइबल निकाली और पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते ही मैं सो गया। और तब मैं उठा और मैंने थोड़ा सा पानी पिया, अपने आप को हिलाया, इधर उधर थोड़ी चहलकदमी करी और फिर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। और कोई भाई वहाँ पर आया और उसने मेरे को शर्ट उतार के बैठे हुए देखा, जैसा कि मैं सीढ़ियों पर गर्मी के कारण बैठा हुआ था, और उन्होंने मुझको हाथ हिलाकर सलाम किया और मैंने भी हाथ हिलाकर सलाम किया। मैं सोचता हूँ शायद हमारे शहर में से या कलीसिया में से कोई भाई था जो वहाँ से गुजरा था, और मैं इतना ज्यादा विचारों में मग्न था और सोच रहा था कि मैंने एक निगाह गुजरती हुई कार पर डाली और मैंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर दिया। और कल की रात मैं अपनी कार में बैठकर चार्ल्सटन की ओर गया ताकि कुछ प्राप्त कर सकूं, और ऐसा लगता था कि खुदावन मुझसे कुछ बातचीत करना चाहता था, लेकिन शैतान पूरी कोशिश कर रहा था ताकि मुझे खुदा से दूर रखे और मैं कुछ सुन ना सकूं। तो मैंने सोचा कि जब वो ऐसी परेशानी पैदा कर रहा है, मैं भी इंतजार करता रहूंगा और दरवाजा तब तक खटखटाता रहूंगा जब तक कि खुदावन ना खोल दे। तो थोड़े लम्हों के बाद, अर्थात आज सुबह लगभग 7 बजे मैं जल्दी ही उठ के बैठ गया। और कल मैंने बीमारी का थोड़ा अनुभव किया क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मक्के के दाने खा लिए थे जो काफी गर्म थे, मसालेदार थे, और इससे मेरा पेट ठीक नहीं रहा और मैं उस बीमारी के हाल से बचना चाह रहा था। और आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब ऐसा हुआ कि मेरे को एक वचन मिला जिससे मैं बहुत ज्यादा चकित हो गया, और मैंने उस वचन को बार बार देखा और पढ़ा और उसने मुझे हर बार चकित ही किया। और मैं वचन में पढ़ता रहा, थोड़ी देर तक सोचता रहा। तो ऐसा लगता है कि आज सुबह के लिए खुदावन ने हमें एक संदेश दिया है जिसको रोकने की शैतान ने पूरी कोशिश करी। बहन लार्सन, क्या आप उस छोटे बच्चे को यहाँ लेकर आएंगी? खुदा उनके साथ रहे और उनकी मदद करे। और मैं 2 दिन से पिछले संडे लगभग आपको रोके रहा हूँ ताकि सुबह और शाम की इबादत हो, और ये काफी कठिन बात है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों ने लंबा लंबा सफर तय किया है यहाँ आने के लिए, और किसी किसी ने अपने एक दिन का काम भी छोड़ा है। तो यदि आप लोग जो कि संडे को यहाँ से वापस जाएंगे या कुछ लोग मंडे को जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि अगले रविवार के लिए प्रभु की मर्जी क्या है उसकी कुछ प्रोग्राम अनाउंस कर सकूं। जब तक कि सारी की सारी सभा यहाँ पर उपस्थित ना हो रात के संदेश सुनने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि रात की इबादत के लिए रुकेंगे। और कितने लोग हैं जो अगले रविवार को यहाँ रुकेंगे, मेहरबानी से अपने हाथ खड़े कीजिए। ओ, ये तो काफी हैं। क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं भाई बेन? आज सुबह मेरे पास संदेश जो है वो बहुत ही लंबा है, और आप जानते हैं कि मैं तो खुद ही कलीसिया में रूल को स्थापित करने वालों में से एक हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैंने ये कहा था कि जब टेप हो रहा होगा तब लंबाई के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। तो देखिएगा, ये आज टेप हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि संडे की दोनों इबादतें जो हैं, प्रभु अगर हमको अनुग्रह दे तो ज्यादा लंबा मैसेज नहीं रखेंगे, लेकिन इस हफ्ते की दोनों मीटिंग में हम जरूर करना चाहेंगे। मैं अच्छा नहीं समझता कि आपको दो दो बार बुलाया जाए, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही समय बचा है, और याद रखिएगा कि समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में हमको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम ज्यादा ज्यादा लंबे समय तक इबादत कर सकें। देखिए, इसको याद रखिएगा, कुछ ना कुछ अवश्य घटना घटने वाली है, या तो कानूनी हमको रोक देगा, या फिर शैतान हमारे बीच में कुछ लोगों को इस्तेमाल करके उनको छिन्न भिन्न कर देगा। आप देखिए, ऐसा ही शुरू से शैतान करता आया है, तो ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य होने वाला है, और इसलिए जो भी समय हमको थोड़ा बहुत मिला है हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ना, अब उनके लिए जो कि आज रात अपने घर वापस जाने वाले हैं, तो आज जो रविवार की रात का संदेश है ये छोटा सा संदेश रहेगा, तो यदि आप लोग घर वापस जाना चाहते हैं हम जरूर आपको टेप दे देंगे ताकि आप उसे घर ले जा सकें, लेकिन यदि नहीं तो आज मैं प्रचार करूंगा रात में, खुदावन जैसी भी अगुवाई करें, और कल और परसों जैसे खुदावन ने मुझको बताया मैंने याददाश्त के मुताबिक एक संदेश को नोट कर लिया है, और ये दो लंबे लंबे संदेश हैं जिनमें से एक संदेश है जिसको कहा जा सकता है कि चूने वाले हौज या टंकी, और दूसरा है कि हवा बोना और तूफान काटना। और जो आज का सुसमाचार है वो केवल एक शिक्षा प्रद ही समाचार है, तो आज की रात शायद मैं प्रचार करूं हवा बोना और तूफान काटने पर, और या फिर ये प्रचार करूंगा कि चूने वाले हौज अर्थात टंकी है। आज की सुबह अब मैं चाहता हूं कि पवित्र वचन में से पढ़ूं, और यदि आप आराम से हैं तो मेहरबानी से कहिए आमीन। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बाइबलों को खोल लें वहां पर जो कि होशे नाम की पुस्तक में पाया जाता है, आप जो कि पढ़ना चाहते हैं, और आइए हम होशे नबी की पुस्तक में से उसके छठे अध्याय में से थोड़ा सा पढ़ेंगे, और हम सब आइए खड़े हो जाएं। प्यारे खुदावन, हम इस योग्य नहीं कि इस पवित्र पुस्तक को अपने हाथों में ले सकें, क्योंकि हमने पढ़ा है वचन में, ना तो कोई मनुष्य स्वर्ग में, ना धरती पर और ना धरती के नीचे इस योग्य न मिला जो इस पुस्तक को अपने हाथों में ले सके या उसके ऊपर निगाह भी कर सके। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा आया जो कि वध किए हुए मेमने की तरह था, उसने पुस्तक को अपने हाथ में लिया क्योंकि वो इस योग्य था, और उसने उन मोहरों को खोल दिया, और आज सुबह हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में आए और इस लिखी हुई किताब को खोले, क्योंकि ये पुस्तक छुटकारे की पुस्तक है, और जितने छुटकारा पाए हुए लोग हैं उनके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, और ऐसा हमको अनुग्रह मिले कि आज की सुबह हम अपनी स्थिति को देख सकें कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
Come now and let us return to the Lord, for He hath torn.
चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। दो दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे।
Then shall we know if we on to know the Lord.
आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है।
ओ एफ्रेम, व्हाट शैल आई डू अनटो थी, ओ जूदा,
हे एप्रेम मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग खुदा का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वो खून से भरी है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में बध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इसराइल के घराने में मैंने रोए खड़े करने का कारण देखा है, उसमें एफ्रेम का छिनाला और इसराइल की अशुद्धता पाई जाती है। और हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया गया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन में जो हमने अभी पढ़ा है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विषय दे जिसको हम आज पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज सुबह मेरे संदेश का शीर्षक है अपने दिन और उस समय के संदेश को पहचान लेना। हमने पिछले रविवार के संदेश से देखा, जबकि हमने झोपड़ियों का तुरहियों के पर्व का प्रचार किया, और अब मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूँ। खुदा की जो घड़ी है उसमें इसराइल का क्या समय चल रहा है, और आज हम संडे स्कूल के एक विषय को देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को पहचान लें और अच्छी तरीके से समझ जाएं कि हम कैसे समय में रह रहे हैं। हमारा समय बिल्कुल खात्मे पर आ रहा है, और इसके द्वारा से आप समझ जाएं कि हम कौन से समय और घड़ी में रह रहे हैं, चिन्हों को समझ जाएं, संदेश को समझ जाएं जो कि हमें प्राप्त कर लेना है। और जैसे हमने पिछले रविवार को शुरुआत करी, तो पिछले रविवार को हमने जो प्रचार किया उसमें सात तुरहियों के बारे में, आखिरी सात तुरहियों के बारे में जो कि बाइबल में दी गई हैं, प्रचार सुना। और मैं अपने अंदर ये सोचता था कि वो उसी प्रकार से खुलेंगी जैसे कि मोहर खोली गई थी, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान से देखा कि जब इनका खुलासा हुआ तो बहुत जबरदस्त घटनाएं और बातें हुई। और जैसे कि हमने सात कलीसिया काल का संदेश प्रचार किया, वो इतनी ज्यादा सिद्ध और सही थी कि स्वयं ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आया और इस बात को प्रमाणित करके दिखा दिया, और अखबारों ने इस बात को छाप दिया, और सारे देश में इस बात का प्रचार हो गया, यहाँ तक कि आसमान में और चांद पे भी वो दिखाई दे गई बात, और इस बात को महीनों पहले सिद्ध करके दिखा दिया कि वो कौन सी घटना है जो कि आने वाले समय में घटेगी। यहाँ भवन में उसने हम सबको पहले से ही जता दिया था, हमारे सामने उसने ये प्रकट कर दिया, चांद पर प्रकट करके दिखा दिया, सूर्य पर प्रकट करके दिखा दिया, और देशों के क्या हालचाल हैं, उनकी अवस्था के माध्यम से भी उसने हमें समझा दिया है। और जैसे ही रोम की सत्ताधारी व्यक्ति फिलिस्तीन देश में पहुंचे, मैं विश्वास करता हूं कि वो पहला पोप है जो कि फिलिस्तीन देश में गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि पतरस पहला पोप था, और ये इतनी जबरदस्त बात थी। और हमने देखा इससे पहले सात मोहरों में इतने बड़े बड़े भेद छुपे हुए हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं ब्लैक बोर्ड पर जो ड्राइंग बना रहा हूँ कलीसियाई काल के बारे में, मुझे पहले से कुछ नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। खुदावंद इस बात का गवाह है, केवल दर्शन के द्वारा वो चित्र खींचा गया। मैं नहीं जानता था कि खुदावंद डेढ़ साल बाद इसी घटना को आसमान में सिद्ध करके दिखाएगा, चांद में प्रकट करके दिखाएगा, और ये घटना अखबारों से होती हुई सारे देश में फैल जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि चांद सारा का सारा अजीब और गरीब तरीके से काला हो जाएगा ताकि इस जमाने की जो लौदीकियाई काल है उसको प्रकट कर सके। पेपर पे तो आपको केवल छह कलीसियाई काल ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लौदीकियाई काल जो है वो पूरा का पूरा एकदम काला हो गया था। यदि आप इनके आत्मिक एप्लीकेशंस को जान सकें, तो जैसा खुदा ने स्वर्ग में करके दिखाया, जब मैं यहाँ जमीन पर बैठा था तो मैंने जो चित्र खींचा उसमें मैंने एक थोड़ी सी रोशनी की किरण छोड़ दी थी सातवें कलीसिया काल में। वो इसलिए था क्योंकि जब लौदीकियाई काल पूरा का पूरा अंधकार में चला जाएगा, उससे पहले एक आखिरी व्यक्ति है जिसका चुनाव होगा स्वर्ग जाने के लिए। मैंने सातवें कलीसिया काल में एक थोड़ी सी रोशनी क्यों छोड़ी उसका कारण है, लेकिन जब खुदावन ने इसी बात को आसमान में रखा तो पूरा का पूरा कालापन था। और ऐसा लगता है कि शायद जो आखिरी व्यक्ति है वो लौदीकियाई काल से ही आने वाला है, हम नहीं जानते, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक संदेश हो सकता है। और इस बात की ओर ध्यान दीजिए, इससे पहले कि सात मुहरों का मुकाशफा दिया जाए, जिसके बारे में मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था, यहाँ भवन में उसने मुझसे कहा, अर्थात खुदावन ने मुझसे कहा कि तुम तूसान अरिजोना जाओ और वहाँ पर क्या कुछ होगा ये तुम्हें पहले से ही बता दिया गया। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अभी मौजूद हैं जिन्होंने उस घटना को देखा जो अरिजोना में हुई थी, बिल्कुल जैसा यहाँ पर बताया गया था कि घटना घटेगी, सात स्वर्गदूत आएंगे और सारे ही अखबारों ने और मैगजीन्स ने उसको छाप दिया, सारे देश में इसका प्रचार हो गया कि एक अजीब और गरीब गोले में रोशनी आई, पिरामिड के रूप में आई और उसका चित्र और उसका सारा का सारा नक्शा अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से आप सब तक पहुंचा दिया गया। ये जो गोला था उन सात स्वर्गदूतों के आने के कारण से बन गया था, जो कि लगभग 30 मील ऊंचा और 27 मील चौड़ाई में था, और या फिर 27 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा था, मुझे वास्तव में नहीं मालूम, मैं भूल गया हूँ कि कितना था। और सारे ही अमेरिका में इसको देखा गया और अरिजोना में टूसान में जहाँ पर यह घटना घटी थी उसके ऊपर ये घटना दिखाई दिए। अब आप देखते हैं कि बाइबल में खुदा ने किस प्रकार से इस बात को समझाने की कोशिश करी है, ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है, बल्कि खुदावन समझाना चाहता है कि आत्मिक इसका क्या एप्लीकेशन है इस समय में। और उसके बाद अगला संदेश था जो कि सात मोहरों का खुलना था, और वो सारे के सारे भेद जो अब तक बंद थे उनको इस सात मोहरों के मुकाशवा के द्वारा खोल दिया गया, जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनको ये सारा का सारा संसार कबूल नहीं करता, बल्कि बड़े भद्दे रूप में उनके ऊपर प्रहार करता है और इन बातों के ऊपर हमला करते हैं और बोलते हैं कि सब गलत है, फलानी है, धमाकी है। यहाँ पर एरिजोना में कैसा एक घटना घटी कि दो टेप्स को ले मिला करके एक नई बात बता दी गई और ऐसा कहने की कोशिश करी गई कि मानो मैंने ही ऐसा प्रचार किया हो। उस दर्शन को हमेशा याद रखिएगा जो कि एरिजोना के कार्य से संबंधित दिया गया था। बाइबल हमें यह बताती है कि ये भला होता कि उसके गले में एक चक्की का पत्थर बांधा जाता। और दूसरी बात कि चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे प्रचारक हो, जो कोई भी अपनी मर्जी से खुदा के कलाम में से एक शब्द भी निकालेगा या एक शब्द उसमें बढ़ाएगा, और लोग अपने ही अर्थ लगा देते हैं प्रभु के वचन में और ऐसे बोलते हैं मान लो खुदा का कलाम वही हो, और लोग ये कोशिश करते हैं कि मान लो मैंने वो वचन कहा हो जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो प्रभु का संदेश है, और कौन इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा। और जैसे कि दर्शन में दिखाया गया था इस प्रकार से नबियों का एक ढेर सारा झुंड बन गया। मैं विश्वास करता हूँ कुछ संडे पहले ही बताया था जैसा होगा बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। जब तक मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ खुदावन नहीं लड़ सकता, लेकिन खुदावन को लड़ने दीजिए क्योंकि वही है जो हमारी देखभाल करता है और हमारी परवाह करता है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले रविवार को जो हमने प्रचार किया था उन पर्वों के बारे में, और हमने एक पेंटिकॉस्ट के पर्व के बारे में भी सुना था, और हमने ये भी देखा था कि पेंटिकॉस्ट के पर्व और तुरहियों के पर्व के बीच में एक बहुत लंबा समय दिया गया है, बिल्कुल पक्का घिना हुआ 50 दिन का वक्फा है पेंटिकॉस्ट के पर्व और तुरहियों के पर्व के दौरान। और 50 दिन पेंटिकॉस्ट का मतलब ही 50 होता है, जिसमें कि फूलों को हिलाया जाता था या जो भी पहली फसल का फल होता था उसको लाया जाता था। और हम देखते हैं ये तो टाइप में है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक फल लाए जाते थे, ये इस बात को दर्शाता था कि पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो लोगों के ऊपर उंडेला जाएगा। और हम देखते हैं कि वो 50 दिन अन्य जातियों के द्वारा ग्रहण कर लिए गए, अर्थात खुदा ने उन अन्य जातियों को जिनमें उसका नाम पाया जाता है उनको बुला लिया, अर्थात पेंटिकॉस्ट का पर्व। और हम लोग इस पेंटिकॉस्ट के पर्व में एक लंबे अरसे से चलते चले जा रहे हैं, और वास्तव में इन 50 दिनों में ठीक प्रकार से सात सबत बनते हैं, और सात सबत सात कलीसियाई कालों को दर्शाते हैं ताकि इस पेंटिकॉस्ट के पर्व में ये लोग बुलाए जाएं। और अब अंत में जब ये सात सबत खत्म होते हैं तो आखिर में आकर प्रायश्चित का दिन आता है जिसमें सात तुरियां फूंकी जाती थीं, और इन सात तुरियों को इसलिए फूंका जाता था ताकि एक दुख का और प्रायश्चित का दिन मनाया जाए। और हम देखते हैं कि इसराइल जो है ये सात तुरहियों का संबंध केवल इसराइल से ही है, और उसने क्यों मुझको सात तुरहियों के बारे में प्रचार करने नहीं दिया, और यहाँ तक कि मैंने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया था, हॉल तैयार हो गया था और सात तुरहियों के ऊपर प्रचार किया जाना था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कौन सी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है अंदर से। और जैसा कि मैंने कहा हम सब ने तैयारी करनी थी। मैंने और बिली ने लगातार काम करते हुए हॉल तैयार कर लिया था, एयर कंडीशन बिल्डिंग ले ली थी ताकि आने वाले सप्ताह में इन मीटिंग्स को किया जा सके, ताकि इन सात तुरियों का प्रचार अगले 10 दिनों में या 8 दिनों में किया जा सके। और उसके लिए स्कूल का ऑडिटोरियम हमने ले लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने नहीं चाहा किसी कारण से कि मैं इस काम को करूं। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैं प्रार्थना में गया और मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक कर खुदा के पास जा रहा हूँ। और उसने अर्थात खुदा ने मुझको समझाया कि सात तुरियों का जो चक्कर है वो छठी सील के दौरान आता है, जिनको मैंने ऑलरेडी अलौकिक रीति से प्रचार कर दिया है। ये खुदावन का ही हाथ है जो इस कार्य को कर रहा है, और इसका तात्पर्य केवल इसराइल से है जिसको हमने छठी मोहर के दौरान देखा है। और आप सब जिन्होंने सुना है आप जानते हैं किस प्रकार से यहूदियों का के ऊपर अत्याचार किए गए, और जो अन्य जातियों का समय है वो इस पेंटिकॉस्ट के पर्व के दौरान है। और ये जो सातों तुरहिये हैं ये छठी मोहर के दौरान ही फूकी गई हैं, जिसको हमने पिछले रविवार को देख लिया था तुरहियों के पर्व के संदेश में। इसका क्या अर्थ था? इसका कारण था कि सारे यहूदियों को सारे संसार के हिस्सों से वापस बुलाकर अपने देश में पहुंचा देना, और ऐसा होना जरूरी है। और मोहरों के खुलने के दौरान हमने देखा कि सातों तुरहिये छठी मोहर के दौरान ही फूकी गई। अब सातवें स्वर्गदूत का जो संदेश है उसका काम है कि मोहरों में पाए जाने वाले सभी भेदों को खोल दे, ताकि उस संदेश के द्वारा अंतिम घड़ियों में पाए जाने वाले अन्य जाति कर्मचारियों को बुला ले, और वही उनको भी इनाम दिया जा सके जो कि पहली घड़ी के बुलाए गए कारीगरों को दिया गया था। और खुदावन यीशु मसीह ने हमको ऐसा ही सिखाया है कि बाहर गए और कुछ लोगों को कटनी के लिए बुलाया गया, वो किराए पे बुलाए गए, और जब उन्होंने अपना काम सवेरे से कर लिया तो उनको ठहराए हुए समय के अनुसार उनका पैसा दे दिया गया। और फिर दोपहर के समय भी कुछ लोग आए, उन्होंने काम किया, और फिर अंतिम घड़ी में भी अर्थात 11th आवर पे भी कुछ लोग आए और उन्होंने भी दिन में काम किया। और जो अंतिम घड़ियों में आए थे मजदूर, उनको जितना पैसा मिला उतना ही पैसा सवेरे से काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिला। ये बिल्कुल पक्का और सीधा और सच्चा है कि किस प्रकार से पहले घड़ी का जो संदेश वाहक है, किस प्रकार से वो वचन लेकर आए, सुसमाचार लेकर आए, सच्चाई के साथ आए, और पहले दिन में अर्थात पेंतेकुस्त के दिन में आकर उसके बाद बिल्कुल अंधकार भरा समय आया जिसने सारी चीजों को छुपा दिया, और फिर दोपहर के समय लूथर आया, वेस्ली आया, और उन सबों ने काम किया। और अब जरूरी है कि शाम के समय भी एक संदेश आए, और लाजमी है कि वही प्राप्त करें जो कि सुबह से काम करने वालों ने हासिल किया है। सांझ का संदेश बताता है कि हर चीज को वापस बहाल कर दिया जाएगा, ताकि पहली चीज के मुताबिक अंतिम चीज भी हो जाए। और याद रखिए उस दर्शन को जो कि पिछले सप्ताह बताया गया था, किस प्रकार से दुल्हन का एक दृश्य मुझे दिखाया गया, और एक बहुत खूबसूरत अच्छी प्यारी सी दुल्हन आई जो मुझे उस दर्शन में दिखाई गई। और उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो बैठा हुआ केवल देख रहा था, दर्शन पा रहा था। और वहां पर जब दुल्हन आई तो मैंने अपने बगल से किसी की आवाज ये कहते हुए सुना, ये देखो दुल्हन का दृश्य दिखाया जा रहा है। और जब वो मेरे बराबर सामने से आई, मैंने ध्यान से उसे देखा, बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, जवान थी, वो बहुत ही खूबसूरत चाल से चल रही थी जैसे कि एक सभ्य स्त्री या महिला चलती है, कोई मार्चिंग नहीं चल रही थी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जैसे एक सभ्य महिला चलती है इस प्रकार से वो चल रही थी। और ये था वो तरीका कि वो चलते हुए मेरे बाईं ओर से आ रही थी, और इसी प्रकार से वो चलते चलते मेरी निगाहों से फिर आगे उझल हो गई, और फिर उसने अर्थात जो मुझसे बोल रहा था मेरी निगाह दाहिनी ओर फेरी, और उसने मुझे हर एक कलीसिया को दिखाया जो कि अपने अपने युगों से आ रही थी। ओ वो कितनी अभद्य और कितनी खराब थी देखने में, जो कि अंतिम दिनों की कलीसिया थी जिसकी अगुवाई करने के लिए एक डाइन अर्थात एक चुड़ैल थी, और वो इतने गंदे प्रकार के कपड़े पहने हुए थी कि देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था, नंगापन था, और वो कदम ताल करती हुई जा रही थी अपने शरीरों को मटकाते हुए जैसे रॉक एंड रोल में किया जाता है, और वो औरतें अपने शरीर को मटका मटका के ऐसे चल रही थी। उन्होंने अपने आगे एक ग्रे कलर का जो कि एक बहुत ही पाखंड की निशानी है एक कागज ले रखा था। ग्रे ना तो सफेद रंग है ना काला रंग है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक धोखा देने वाला रंग है। ग्रे ना तो सफेद होता है और ना काला होता है, ये एक धोखे का रंग है। और इस ग्रे रंग का कागज उन्होंने अपने आगे लगा रखा था, और हुला स्कर्ट जैसे जिसमें लेस पहनाया जाता है पहन रखा था। इस कागज को वो अपने आगे लगाई थी और ऊपर बिल्कुल एकदम नंगी थी।
और इस प्रकार से अपने शरीर को मटकाते हुए उस म्यूजिक पर वो चलती चली जा रही थी और मुझे बताया गया ये है कलीसिया। और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मेरा हृदय एकदम से जैसे बेहोश होने लगा और मैं ये सोचने लगा क्या ये वो चीज है जो एक मसीह की दुल्हन के रूप में उसको दी जाएगी। सारी मेहनतों के बावजूद मनुष्य ने जो कोशिशें करी हैं, क्या ऐसी दुल्हन है जो मसीह को तैयार करके दी जा रही है और ऐसी अभद्दी देखने में गंदी और बिल्कुल एक वेश्या की तरह फहश औरत की तरह दुल्हन थी जो मसीह के लिए लाई जा रही थी और उसने मेरे जी को खराब कर दिया। और जैसे ही वो करीब से गुजरी और जब हमारे सामने आई तो हमने देखा वो अपने आगे एक कागज लगाए हुए थी अपने शरीर को मटकाते हुए रॉक एंड रोल करते हुए कभी एक तरफ दिखाती थी कभी अपने शरीर का प्रदर्शन दूसरी ओर करती थी। ऐसे चल रही थी जैसे आज कल के नाचने और गाने वाले लोग किया करते हैं अपने शरीर को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रही थी कि बहुत ही उसे कामुकता दिखाई देती थी। इस प्रकार से वो जा रही थी और मैं इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा वो बोल रहा हूँ इस बात का खुदावंद ही मेरा गवाह है। लेकिन वो अमरीका की कलीसिया थी और जैसे वो करीब से गुजरी मैंने देखा उसके पिछले हिस्से में कुछ भी कपड़ा नहीं था वो बिल्कुल नंगी थी। और जैसे वो मेरे करीब से गुजरी मैं बेहोशा होने लगा और मुझे बड़ा अजीब सी महसूस होने लगा। और फिर उसने मुझसे कहा दोबारा से दुल्हन तुम्हें दिखाई जाएगी। और यहाँ फिर उसके पीछे दुल्हन आती है बिल्कुल वैसी ही दुल्हन जैसे कि पहले गुजरी थी। और तब मेरा हृदय खुशी से भर गया और कूदने लगा इस बात को जानकर कि अंत में फिर एक दुल्हन आएगी और वो दुल्हन उन चीजों से मिलकर बनेगी वैसे कपड़े पहनेगी वैसी चाल ढाल में होगी जैसे कि पहले दिखाई गई थी और वो बुलाई जाएगी। और मैं जानता हूँ कि ये सत्य है और अगर ये बात सत्य नहीं है तो जितने भी दर्शन मैंने पिछले समय में देखे हैं वो सब गलत हैं। और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है जितनी बातें खुदा ने मुझे दिखाई और बताई हैं उनमें से एक बात भी गलत नहीं हुई हर एक बात सत्य निकली है। जब वो मेरे करीब से गुजरी आप जानते हैं आजकल की लेटेस्ट जो कलीसियां हैं उनकी कितनी गंदगी दिखाई गई और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हम कलीसियां हैं। किसी ने मुझसे एक दिन कहा ब्रदर रिडल के बारे में जो कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और इस समय दीवार से सटे हुए खड़े हैं और उन्होंने इसी चीज को इस रूप में देखा एक दाख लता के ऊपर चूसने वाला परजीवी है। और दूसरे दिन हम इस बात को एक कमरे में बैठ करके सोच रहे थे विचार कर रहे थे भाई रिडल समय के से बहुत ज्यादा परेशान थे हालचाल को देख करके और इस बात से परेशान थे आजकल कलीसियाओं में कैसी भावनाएं पाई जा रही हैं। रोजाना ही ये भावना नीचे गिरती चली जा रही है। अलग अलग लोग भागों से बहुत सारे प्रचारक आते हैं यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं और मुझसे पूछते हैं भाई ब्रदम क्या हुआ ये क्या होता चला जा रहा है। भाई ब्रदम ने मुझसे पूछा एक सवाल किया कि क्या बात है इनके अंदर शैतान का आत्मा है या उसको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये जो चूसने वाला जीव है ये तो दाखलता की जो असली ताकत है उसके ऊपर जीवित रहता है और ये ऐसा होता है कि संतरे के पेड़ में नींबू की एक शाखा लगा दी जाती है नींबू जीवित तो रहता है लेकिन जब उसमें फल लगता है तो वो नींबू का ही लगता है। यद्यपि वो जीवित रहता है और संतरे के ऊपर ही जीवन व्यतीत करता है और आज जो कलीसिया कहलाती है वो केवल एक फेवस किए हुए परजीवी के रूप में है। धर्म के नाम पर जीवित है कलीसिया के नाम पर जीवित है चाहे कैथोलिक हो और चाहे प्रोटेस्टेंट हो ये सब परजीवी हैं चूसने वाले हैं कि दाग लगा की सामर्थ और उसकी ताकत को चूसते रहते हैं उसी के ऊपर जिंदा रहते हैं लेकिन जब फल का प्रश्न आता है अपने ही फल लगाते हैं क्योंकि इनका परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि ये शुरू से ही खुदा के चुने हुए योजना में नहीं पाए जाते और यही वजह है कि वो खुदा के कलाम का इनकार करते हैं और अपने फलों को लाते हैं। जो वास्तव में संतरे का पेड़ है वो पहले से निश्चित किया गया है उसमें से केवल संतरे का फल ही निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लाता हूँ और तुम डालियां हो लेकिन वो पेड़ आगे अगर कभी भी कोई शाखा निकालेगा तो वो अपने वास्तविक फल को ही पैदा करेगा। और अब ये जरूरी है कि अंत में हरेक चीज की बहालियत हो जाए इस दाखलता के अंतिम समयों में और जरूरी है कि अब बहालियत का समय आए ताकि शाम की रोशनी आए और ज्योति के द्वारा उसको ठीक कर दे। लेकिन वो तो केवल दाखलता में से ही आएगी किसी डिनोमिनेशन में से नहीं आएगी क्योंकि तो वो तो पैबस्ट किया गया हुआ है वो तो केवल अपने ही फल लाएगा असली वचन में से ही असली रोशनी आएगी और शाम के समय उस रोशनी को आना जरूरी है और सांझ के समय उजियाला होगा और रोशनी के द्वारा से ज्योति के द्वारा से ही फल पकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से वचन सीधा और सिद्ध है एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें ना दिन होगा ना रात होगी फल अपने आप से नहीं पक सकता जब तक कि सूरज उसे ना पकाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना प्रचार करें या क्या कुछ करते रहें, ये बिल्कुल भी पक नहीं सकता, ये जहूर में बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ये प्रमाणित हो नहीं सकता। केवल उसी के द्वारा हो सकता है जिसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं ही वचन हूँ। तो जरूरी है अब एक सामर्थ्य आए, तो पवित्र आत्मा के लिए जरूरी है कि वो स्वयं आए ताकि फलों को पकाए, सिद्ध करके दिखाए, प्रमाणित करे हर बात को, प्रकट करके दिखाए और उन वचनों को जो पहले कहे गए थे, जो वादा किए गए थे, उनको प्रकट करके दिखा दे। और शाम की रोशनी इस कार्य को करके दिखा देगी। ओह क्या बढ़िया समय है, दुल्हन उसी हालत में दोबारा गुजार करके दिखाई गई जैसे कि पहली अवस्था में दिखाई गई थी। और जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि वो अपने पैरों को किस प्रकार से खींच रही है। और इन बातों के बारे में और बहुत कुछ भी कहा जा सकता है उन दिनों के बारे में जिनमें कि आज हम लोग रह रहे हैं। होशे नबी 6 अध्याय की पहली आयत में बोलता है प्रभु के पास लौट आओ। ध्यान दीजिए, उसने कहा था कि वो छितरा दिए जाएंगे और वो छितरा दिए गए। उसने कहा था कि वो प्रभु के पास लौट आएंगे जिसने कि उन्हें फैला दिया था और वही उनको एक साथ इकट्ठा कर लेगा। ध्यान करिए, वो अंधे कर दिए गए थे, इधर उधर छितरा दिए गए थे, तबाह हो गए थे, उनसे कहा जा रहा है लौट आओ। और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ। वो हमें चंगा करेगा और एक साथ इकट्ठा करेगा, जैसे कि हिजकेल 37 अध्याय में है कि सूखी हड्डियां थी, सारी की सारी घाटी सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। हिजकेल ने उन हड्डियों को वापस लौटते हुए देखा। ध्यान दीजिए, होशे नबी ने कहा है दो दिन के बाद वो अर्थात खुदा उनकी ओर मुड़ेगा, वो हमें कबूल कर लेगा और हमें जिला उठाएगा। और उठाने का मतलब पुनरुत्थान नहीं है। उठाने के शब्द के बारे में मैंने कई जगह देखा और उसका अर्थ एक जैसा ही मिला, जिसका अर्थ है उठाना। वो हमको जिला उठाएगा दो दिन के बाद, जैसे कि उसने कहा था तीसरे दिन में हमें वो जिला उठाएगा। उसने हमको छितरा दिया था, हमको अंधा कर दिया था, हमको तबाह कर दिया था, लेकिन तीसरे दिन वो हमको जिला उठाएगा। आप जानते हैं कि यहूदियों को इसलिए अंधा किया गया ताकि हम लोग खुदा की निगाहों में अनुग्रह पा जाएं। वो सारा का सारा देश छिन्न भिन्न कर दिया गया और लोग तितर बितर करके सारे संसार में छितरा दिए गए। और यहूदियों ने मसीह का तिरस्कार और इनकार किया ताकि हम लोग मसीह को ग्रहण कर लें, ताकि अन्य जातियों में से खुदा के नाम के कहलाने वाले लोग बाहर निकल आएं। अब देखिए, आप कोई भी स्त्री जब पुरुष के संपर्क में आती है तो शादी के बाद उसका नाम अपने ऊपर ले लेती है। ये अंधे अन्य जाति लोग जिनको दिखाई नहीं देता था कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में लिया जाता है, ये है तो बहुत बुरा, लेकिन ऐसा होना निश्चित था। यहूदियों के साथ भी ऐसा ही होना था कि वो अंधे रहे और दिखाई ना दे सके। केवल एक ही है जो देख सकता है, जो पहले से ही देखने के लिए निश्चित किया गया है, वरना आप कदापि नहीं देख सकते। यहूदी लोग अपने मसीह को ना देख सके, ना पहचान सके, यदि वो बड़े पढ़े लिखे थे और धार्मिक ज्ञान के अच्छे खासे जानने वाले थे, बड़े नामी ग्रामी लोग थे जो उसी बाइबल को पढ़ते थे जिसे आप पढ़ते हैं। और अब जबकि हमको सब बातें समझ में आ गई हैं, हमारे ऊपर प्रकट कर दी गई हैं, तो हम कहते हैं हम मसीह को जान गए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं देख सके और न ही वो आज भी देख सकते हैं। और उनके लिए पहले से नबूवत करी गई है कि वो अंधे होंगे, और आज के लिए कलीसिया की भविष्यवाणी ये करी गई है ये भी अंधे होंगे, ताकि अंतिम दिनों में जो अंतिम संदेश आएगा उसका इनकार कर दें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम तुच्छ हो, अभागे हो। और ध्यान दीजिए इस दुल्हन की हालत को जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाई थी अपने अनुग्रह में होते हुए, अंधे नंगे और नहीं जानते। ओ प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कीजिए। बाइबल कहती है कि वो नंगे थे और मैंने उसको ऐसा देखा। लौदीकिया की कलीसिया नंगी है और जब मैंने दर्शन में कल रात उसे देखा तो नंगा ही देखा। मुझे जब दिखाया गया तो ये बताएगा कि वो नहीं जानती कि वो नंगी है। ओह कितने शुगर की बात है। खुदा का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उसके बहुत कृतज्ञ हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जितना अनुग्रह हमारे ऊपर किया गया है उसके अनुसार हमने अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करी। और दर्शन में मुझको दिखाया गया कि वो एकदम नंगी थी और इस बात को वो नहीं जानती थी क्योंकि अंधी थी। जैसे इसराइली अंधे किए गए ताकि अन्य जाति लोग प्रवेश कर लें, वैसे ही अन्य जातियों को अंधा किया गया है ताकि दुल्हन यहाँ से ऊपर उठा ली जाए और इसराइली अपने तुरहियों के पर्व को मना सके। देखिए कितना सीधा सीधा लिखा हुआ है। दो दिन के बाद वो हमें जिला उठाएगा, अर्थात हमको जीवन दान देगा। सारे यहूदियों को इकट्ठा कर लेगा, जैसा कि हमने तुरियों के बारे में प्रचार किया है और सुना है, और हम उसके सामने जीवित हो जाएंगे, अर्थात उसकी निगाहों में अनंत जीवन पा जाएंगे। जैसे होशे नबी ने अभी बताया, अपनी पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि हम उसकी निगाहों में जीवित हो जाएंगे, उसके पास आकर के हम जीवन प्राप्त कर जाएंगे। यह खुदावंत की अपनी ही जिंदगी है, अपना ही जीवन है जो कि अनंत है, और उसकी निगाहों में हमको अनंत जीवन मिल जाएगा। जो सुखों में जीता है वो जीते जी मर गया है, और वचन में इस बात का वादा किया गया है कि इसराइल को दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा और खुदावन की मौजूदगी में उनको जीवन मिल जाएगा। वो इसराइली लोग अब तक मरे रहे हैं, सच्चाइयों को जानने से अनभिज्ञ रहे हैं, जब तक कि पेंटिकॉस्ट का पर्व नहीं आ जाता। और ध्यान दीजिएगा, दो दिन के बाद, इसका अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे वाले दो दिन, उसका कारण यह है क्योंकि इस बात को घटे हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं जब कही गई थी। इसका अर्थ है खुदावन प्रभु के साथ दो दिन, 2000 साल के बाद। अब आपको मालूम है कि कितना समय गुजर चुका है, ये 2700 साल गुजर चुके हैं। क्यों? क्योंकि होशे ने जो बात कही है वो मसीह से 780 साल पूर्व लिखी है। अब 1964 चल रहा है और ये लगभग 2700 साल पुरानी बात है। उसने कहा है दो दिन के बाद, अर्थात तीसरे दिन में वो हमें जिला उठाएगा दोबारा से और अपनी मौजूदगी में हमको जीवन देगा। यहाँ है वो तुरही जो आपके सामने हम नजर आ रही हैं, और यह है वो घड़ी जिसमें हम जीवित हैं, और वो दिन जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं।
Now, they have been scattered, blinded, gathered,
और अब वो छितराए गए, अंधे किए गए, दोबारा से इकट्ठे किए गए और अपने तीसरे दिन में आ चुके हैं। क्या आप इसे देखते हैं? और वो फिलिस्तीन देश से सारे संसार में छितरा दिए गए, मसीह का इनकार करने की वजह से अंधे कर दिए गए, और अब वो अपने स्वदेश में वापस लौट चुके हैं, तुरहियों को सुनने के लिए तैयार हैं, ताकि अपने प्रायश्चित को पहचान सकें। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब वो उसे देखेंगे, उसके हाथों में छेद देखेंगे, ये तब होगा जब कलीसिया से जा चुकी होगी, तब वो उसे पहचान जाएंगे और उससे पूछेंगे, तुझे कहाँ से चोटें लगी, ये कहाँ से तेरे चिन्ह पाए जाते हैं? तब वो बोलेगा, मुझे अपने ही दोस्तों के घर में लगे। और वो कहता कि हर एक परिवार अपने अपने को अलहदा कर लेगा, और वो दिनों दिन रोते रहेंगे इस प्रकार से जैसे कोई अपने एक लौते बेटे की मौत पर रोता है। याद रखिएगा, तुरहियों का पर्व ऐसा ही करवाएगा, ताकि रोएं, दुखी होएं उस कुर्बानी के लिए जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि थी वो कुर्बानी उन्हीं के लिए। वो तो अपने देश में पहुंच चुके हैं, वो छितराए गए, अंधे किए गए और अब एकत्रित कर दिए गए, और ये सारी की सारी सातों तुरहियां छठी मोहर के दौरान फूकी गई, ताकि उन सबको इकट्ठा कर दें, क्योंकि सातवीं जो तुरही है वो बहुत ही महान तुरही है। जैसा कि हमने पिछले रविवार को देखा, छह तुरहियां छठी मोहर के दौरान फूकी गईं, और छठी सील जैसे कि हमने देख लिया है, हर एक बात अपने ही समय पर पूरी हुई है, केवल उनकी तुरहियां एक साथ फूकी गई हैं, और हम देख रहे हैं पिछले 2000 साल से इस पेंटिकोस्ट के पर्व में हम लोग पाए जा रहे हैं, और अब 2700 साल उस समय से लेके आज तक हो चुके हैं। उसने कहा है तीसरे दिन में हम दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। दो दिनों के बाद, अर्थात तीसरे दिन में हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी निगाहों में हमको जीवन मिलेगा। क्या उस वादे को आप देख रहे हैं? सारी घटना दीवार पे लिखी हुई है, समय आ चुका है, और अब हमें दिखाई दे रहा है कि हम कौन से जमाने में हैं। अब वो अपने देश में हैं और तुरहियों के फूके जाने का इंतजार कर रहे हैं, और अपने प्रायश्चित को पहचानने के इंतजार में हैं, और उसकी आमद के इंतजार में हैं। उस बात पे रोने और पीटने के लिए तैयार हैं, अपने जीव को दुख देने के लिए तैयार हैं कि पहली आमद पे मसीह का हमने इनकार किया और आज अपने देश में उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, सब क्या हो रहा है? हर एक चीज अपने अपने यथा स्थान पे निश्चित हो चुकी है। सुसमाचार का प्रचारक होने के नाते से मैं किसी भी चीज को अधूरा नहीं देख रहा हूँ। केवल एक बात बची है कि दुल्हन यहाँ से छोड़ी जाए, इससे पहले कि वो पहचान पाए कि क्या घटना हो रही है, दुल्हन को यहाँ से चले जाना जरूरी है। वो बांधे गए, छितराए गए, मेरा कहने का मतलब है सारी दुनिया में फैला दिए गए, अंधे कर दिए गए, और अब दोबारा से वो इकट्ठे हो गए हैं। क्या बचा है? दुल्हन रास्ते में से हट जाए, केवल ये बचा है। इस बात के इंतजार में है कि दुल्हन उनके रास्ते में से चली जाए और वो लोग प्रकाशित वाक्य 11 के अनुसार उन दो नबियों के इंतजार में है जो आए और तुरहियों के पर्व का ऐलान करें, ताकि वो इस बात का एहसास कर लें और पहचान जाएं कि हमने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया।
याद रखिएगा, उन मोहरों के दौरान छठी मोहर आती है और 144,000 चुन करके बुलाए जाते हैं। छठी और सातवीं तुरही के बीच में प्रकाशित वाक्य 11 वाले दो नबी आते हैं। बिल्कुल ठीक प्रकार से छठी मोहर से मेल खाती हुई यह बात है। क्या कुछ करना है और क्या कुछ करना था, और इसके द्वारा से दो गवाहों को आना है, मूसा और एलिया को। और ये दोनों नबी हैं, और इसराइली और यहूदी लोग केवल नबियों का ही विश्वास करते हैं, और वो नबियों के चिन्ह के साथ उनके बीच में आएंगे और उनके काम बिल्कुल नबियों के ही काम होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही बात करके दिखाई है और उन्होंने दर्शाया है, मनुष्य एक बार मरता है और मरने के बाद जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है उसका स्वभाव कभी नहीं खत्म होता। यदि आप झूठे हैं तो आप वहाँ भी झूठे रहेंगे, यदि यहाँ पर आप गुस्से वाले हैं तो आप वहाँ पर भी गुस्से वाले होंगे, यदि आप यहाँ पर शक्ति हैं तो आप वहाँ पर भी शक्ति रहेंगे। आए आदमी और तो ये समय आ गया है कि जाग उठ और पहचानो और अपना खुलासा करके खुद देख लो कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि मृत्यु से कोई बदलाव नहीं आता। 2,000 साल पहले वो लोग यहाँ से चले गए, मूसा को तो लगभग 2,500 साल हो गए और एलिया को भी लगभग 2,500 साल हो चुके हैं। एलिया भी यहाँ से जा चुका और मूसा भी कब का जा चुका, और यहाँ पर वो उसी स्वभाव के साथ लौट के आ रहे हैं और वही काम करते हैं जो उनका पहले था। मृत्यु इंसान के अंदर कोई परिवर्तन लेकर नहीं आती, केवल उसका रहने का स्थान बदल जाता है। आपका स्वभाव नहीं बदलता, आपका विश्वास भी नहीं बदलता, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, केवल आपके रहने का स्थान बदल जाता है। तो जिस भी प्रकार से आपका स्वभाव आज पाया जाता है, यदि आप खुदा के कलाम में शक करने वाले हैं, आप वहाँ पर भी शक करते रहेंगे। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आप कैसे हैं, आप कितने पवित्र हैं, आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु के बाद एक रत्ती भर का भी फर्क आप में नहीं आएगा, केवल आपका रहने का स्थान बदलेगा। यदि आप खुदावन के कलाम को जैसा कि लिखा हुआ है आज ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिक्र न करिए, आप वहाँ पर भी कबूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रभु के वचन को पूरा का पूरा ही उसकी सामर्थ्य में और उसके प्रमाणित अधिकार में होते हुए ग्रहण करना है, जैसा कि मुकाशवा सहित दिया गया है। तभी आप केवल उस वचन का हिस्सा बन सकते हैं। ये उसके वचन के द्वारा ही है कि मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, जैसा कि एक ईस्टर की सुबह हुआ, जिन लोगों ने उसके वचन पर विश्वास किया था, जो उसके वचन में मारे और गाड़े गए थे और उसके वचन को जो कि प्रमाणित है उस पर विश्वास करके मर गए थे। अब देखिए, इस बात को घटे हुए करीब 2,700 साल हो चुके हैं, वो बिखरा दिए गए, छितरा दिए गए, अंधे कर दिए गए और अब एक साथ इकट्ठे भी कर दिए गए हैं। अब अगली चीज क्या बची है, केवल उनको अनंत जीवन मिलना है। और सभी अन्य जाति लोग बुला लिए गए हैं, दुल्हन रैप्चर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या हम इस बात का एहसास करते हैं, क्या हमने वास्तव में इस पर विश्वास किया है? कहीं ये कहानी तो नहीं है, क्या ये मात्र केवल एक किस्सा ही है, या हमने किसी हकीकत पर विश्वास किया है? क्या हम इसके अलावा कहीं बाहर विश्वास कर सकते हैं? क्या कोई चीज ऐसी है जो हमारे अंदर पाई जाती है? अरे ये तो हमारे जीवन का अपना हिस्सा है और ये हमारे लिए जीवन से ज्यादा प्यारा है। हमारा क्या एटीट्यूड है आज की सुबह जबकि हम इस भवन में बैठे हुए हैं? आपको याद है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा झुंड है जो इसको ग्रहण करता है। और अब इसराइली लोग अपने देश में पहुंच चुके हैं और केवल थुरियों के फूंके जाने का इंतजार कर रहे हैं, छोटी सी दुल्हन के जाने के इंतजार में हैं, ताकि वो प्रकाशित वाक्य 11 के दो नबी आएं और भविष्यवाणी को पूरा कर दें। आप जानते हैं, कलीसियाई काल खत्म हो चुका है। मोहरें खुल चुकी हैं और इस बात को प्रमाणित करता है कि कलीसिया काल में अब क्या बचा है। संदेश का प्रचार किया जा चुका है, इसराइल सीन पे आ चुका, हालेलुया। वो तो केवल अब तुरियों के फूंके जाने के इंतजार में हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, जो आप अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, इस टेप के सुनने के बाद क्या आप जाग रहे हैं? या आपको ऐसा सुनाई देने के बाद अंधापन महसूस होता है? क्या आप इसको एक झूठी भविष्यवाणी कहकर के टाल देंगे, या आपके आंखों के सामने ये खुदा का वचन सिद्ध होकर के आ गया है?
ये आपके सामने प्रमाणित होके आ चुका है, लोगों के सामने प्रमाणित हुआ है। पवित्र आत्मा जिसने इसे लिखा है उसने प्रूव करके दिखाया है, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। इस्राएल अपने देश में आ चुका है, चारों ओर से उनको ढकेल ढकेल के उनके देश में पहुंचाया गया है, जैसे भेड़ों को चरवाहा ले जाता है। लेकिन उसके पीछे आज भी भेड़िए लगे हुए हैं, वो अपने सुरक्षित स्थान में पहुंच चुका है। ध्यान दीजिए, इस्राएल केवल अपने ही देश में आशीष पाएगा, अपने देश के बाहर जाकर उसे खुदा की ओर से कोई भी आशीष कदापि नहीं मिलेगी। खुदा ने इसराइल को कभी भी अपने देश के बाहर आशीषित नहीं किया। आपको ध्यान है, एक बार इब्राहिम बाहर चला गया, वो दोषी ठहराया गया। जब कभी भी कोई इसराइली अपने देश से बाहर जाता है, खुदा उसको छोड़ देता है, उसको दोषी ठहराता है। यदि वो अपने देश में रहे, केवल तभी उसको आशीष प्राप्त होती है। और इसराइल अपने देश में पहुंच चुका है, कलीसिया इंतजार कर रही है ताकि रैप्चर में जल्दी जाए और दुल्हन यहाँ से उठा ली जाए। मोहरें खुल चुकी हैं, हमारे ऊपर प्रकाशित हो चुकी हैं, और लोग बाद दुनिया भर की बकवास करते हैं, सरपंच सीट के बारे में, बपतिस्मे के बारे में बहस करते हैं, उनकी आंखें अंधी हैं और नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस संसार के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है और दुनिया वाले नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं चाहता हूं कि उन जोरों से जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं मैं लड़ाई लड़ूं। और इसलिए इसराइल में प्रकट होने वाले जो दो नबी हैं वो इस जमाने में अप्रकट हो जाएंगे जबकि तुरहियों का पर्व चलेगा। उसने होशे नबी के मार्फत कहा, मैंने इनको काटा है। जरा गौर से देखिएगा, वो इसराइल की बात कर रहा है। मैंने इनको काटा है, मानो मैंने अपने वचन के द्वारा इनको छांटा है, ताकि अपने नबियों के वचन के द्वारा इनको छांट करके सही कर सकूं। और इस तरीके से खुदा अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। उसने सारे संसार में से इनको काट और छांट कर निकाला है। कैसे? अपनी दोधारी तलवार के द्वारा, जो कि उसका पवित्र वचन है। उसने अपने देश को काटा, छांटा और अलग किया है। उसने अपने देश को बाकी देशों के बीच में से निकाला है, अपने नबियों के द्वारा निकाला है, जो कि प्रभु के वचन के द्वारा प्रमाणित पाए गए। इसी प्रकार से उसने अपनी दुल्हन को तमाम डिनोमिनेशंस में से निकाला है, अपने वचन के द्वारा काट के निकाला है, जैसा कि वायदा किया था मलाकी 4 में, अंतिम दिनों में अपनी दुल्हन को तमाम कलीसियाओं में से काट कर छांट कर निकालेगा। वैसे ही उसने छांट कर निकाला है, जैसे कि उसने अपने नबियों के द्वारा, जिनके पास उसका वचन पाया गया, उस वचन के द्वारा से इसराइल को काटा और छांटा और अलग किया है। वैसे ही तुम भी अपने आप को बाकी सबसे अलग कर लो। देखिए आप उनकी ओर इसराइल की ओर निगाह उठाकर कैसे उन्होंने पिछले वर्षों में किया। वो सैमुएल नबी के पास आए और बोलने लगे, हम चाहते हैं कि तू हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। लेकिन सैमुएल ने कहा, क्या मैंने तुमसे कभी पैसा लिया? क्या कभी मैंने तुम्हें खुदा के नाम में कुछ कहा और वो घटना घटी ना हो? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं तू हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। और ऐसा ही आज कलीसियाओं में भी किया गया है। वो बोलते हैं कि अरे हम वचन पे तो विश्वास करते हैं और ये सब ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ऐसा भी हो जाए, कुछ वैसा भी हो जाए। अरे मैं इस बात की फिक्र नहीं करता दुनिया क्या कहती है, खुदावन का कलाम केवल सत्य है और वैसा ही करना चाहिए। इंतजार कर रहे हैं इसराइली लोग, और अपने नबियों के द्वारा ही खुदा ने उनको काट कर छांटा और अलग किया है। भाइयों क्या समय है? प्रचार को क्या समय है? क्या तुम्हें दिखाई देता है तुम कौन से दिन में हो, कौन से चिन्ह के दौरान गुजर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है, कहीं कोई जागृति नहीं पाई जाती है। प्रचारक लोग जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। और मैं जब पढ़ता हूँ एक अखबार में, मैंने भी पढ़ा, जो कि बहुत ही नामी गिरामी अखबार है और हमारी कलीसिया में भी आता है, उस अखबार के निकालने वाले लोगों को मैं जानता हूँ, उसके संपादक को भी जानता हूँ, वो बहुत अच्छे भाई बहन हैं, खुदा का खौफ रखने वाले हैं, और उनका नाम है ब्रदर एंड सिस्टर मुरे, और उस अखबार का नाम है हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग। और ये अखबार एक ऐसा मसीह अखबार है जो आजकल बहुत ही अच्छे किस्म का पाया जाने वाला है। लेकिन वो किसी भी बात को तब तक नहीं छापेंगे जब तक उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में कुछ ना हो। आप देख रहे हैं ये एक तुरही फूकी जा रही है। आप में से कितने दूसरे अखबार को पढ़ते हैं? आप लोग बार बार पढ़ते हैं और हमेशा यही देखेंगे, उसमें उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में यही हर बार छापा जाता है। और बोलते हैं कि नया दिन आने वाला है, कोई नई घटना घटने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए आप सब प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने सोचा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जानते हैं कि एक जबरदस्त जागृति आने वाली है और इसीलिए वो विश्वास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं ताकि एक जागृति आ जाए। वो अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने तो इस दिन को नहीं पहचाना और नहीं जाना कि दुल्हन उनके बीच में जाग चुकी है, और मसीही होने के नाते से वो इस बात को एहसास कर रहे हैं एक जागृति आने का समय है। कुछ ना कुछ उनके अंदर है जो ऐसा खींचता उनको रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके बीच में क्या घटना घट चुकी है। वो जानते हैं कि कोई ना कोई घटना घटने वाली है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच रहे भविष्य में कुछ होगा जब ये घटना उनके सामने घट चुकी है। ऐसा ही पिछले दिनों में भी हुआ। इसराइलियों के साथ क्या हुआ? वो विश्वास कर रहे थे एक मसीह आएगा, और वो विश्वास कर रहे थे उससे पहले उसका फेशवा भी आएगा, लेकिन वो उनके बीच में था और उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उन्हें विश्वास था कि एक फेशवा जरूर आएगा और मसीह का आने की आमद का वो प्रचार करेगा, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने तो उसका सर ही काट दिया और उन्होंने मसीह का भी इनकार किया और उसका सिर काट दिया, क्योंकि नबूवत थी वो अंधे हो जाएंगे। होशे ने भी ऐसा ही कहा और बाकी नबियों ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि उन सब के अंदर एक ही आत्मा था। यूहन्ना ने भी यही कहा और सबने ये कहा, अंतिम दिनों की कलीसिया जो है वो अंधी है, वो नंगी है और मसीह को बाहर निकाल देगी। अपने जमाने में उन भविष्यवाणियों को पहचानने में वो फेल हो गए, लेकिन अंदर से उनको इस बात का एहसास था कि कोई ना कोई घटना उनके जमाने में भी घटने वाली है। उन्होंने उसको नहीं पहचाना, इस बात का एहसास भी नहीं किया, वैसे ही जैसे इसराइलियों ने किया, यहूदियों ने किया, उसी प्रकार से लौदीकियाई काल में भी अंधापन पाया जाता है। इस लौदीकियाई काल के धन दौलत ने, धार्मिक ज्ञान ने कलीसिया को बहुत अकड़ू और विरोधी बना दिया इस संदेश के लिए। आप देखिए यहूदी लोग यूहन्ना के कितने विरोध में थे, यीशु मसीह के कितने विरोध में थे, जबकि यीशु मसीह वही था जिसके आने की वो बाट जो रहे थे। मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं फ्यूज हो गया है या लाइन चली गई है या टेप रिकॉर्डर्स भी शायद हो सकता है कि बंद हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो संदेश के बहुत ही ज्यादा विरोध में थे। क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है और उन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी निकला करती थी। आप जानते हैं कलीसिया में ये जो भवन है इसको कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी के बदन में से गर्मी निकलती है, लगभग 98 BTU तो हर किसी में से निकलती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार आपके जिस्म में से गर्मी निकलती रहती है। वैसे यहाँ पर इतनी ठंडक आई है कि हवा भी चाहे तो जम सकती है, लेकिन चूंकि आपके जिस्म में से बार बार गर्मी निकल रही है इसलिए ऐसा आपको महसूस हो रहा है। और जैसे यहूदी लोग अंधे हो गए थे, वैसे ही आज लौदीकियाई काल का हाल है। बहुत सारा ये विरोध में है संदेश के, जबकि हकीकत क्या है, ये अंधे हैं, नंगे हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं और नहीं जानते। बहुत ज्यादा इनके पास धन है, बड़ी बड़ी शिक्षाएं उन्होंने धर्म की प्राप्त करी हुई हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, और इतना होने के बावजूद अब ये संदेश के विरोध में आ गए हैं और इनको संदेश से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा यीशु मसीह के जमाने में हुआ उसके साथ, और नूह के जमाने में भी लोग संदेश को नहीं मान पाए और इसी वजह से वो उस जहाज के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्योंकि ना तो उन्होंने उस समय के संदेश को पहचाना और ना संदेश वाहक को पहचाना। यही कारण है उनके बर्बाद होने का, क्योंकि नूह के जमाने में उन्होंने समय के संदेश को नहीं पहचाना और उन्हें ये नहीं मालूम था कि खुदावंद इस गुनाह का बदला देगा, और जैसा उसने वादा किया था और कहा था, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा सारी धरती के ऊपर से। इस भविष्यवाणी का उसका अर्थ था, खुदावन जो कुछ भी बोलता है उसको वैसा ही करके दिखाता है, और ऐसा ही आज उसने हमारे बारे में भी कहा है। लोगों ने तो नूह को एक जंगली व्यक्ति समझा, उन्होंने नूह की बातों की कदर बिल्कुल भी नहीं करी। क्या आपको मालूम है, उन्होंने नूह को कभी भी एक नबी के रूप में ना तो जाना और न ही ग्रहण किया। यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा है, उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया, उसको बेवकूफ समझा, उसको पागल समझा और जने क्या क्या उसके बारे में कहा, क्योंकि उन्होंने अपने समय को बिल्कुल नहीं पहचाना, उन्होंने अपने दिन को नहीं पहचाना, चिन्ह को नहीं पहचाना, संदेश को नहीं पहचाना, संदेश प्रचार करने वाले को नहीं पहचाना और उसको अपने बीच में से मजाक कर करके भगा दिया। यीशु मसीह ने कहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। इसराइल अपने देश में पहुंच चुका है अजीजों, हर चीज बिल्कुल ठीक प्रकार से निश्चित जैसी लिखी गई थी वैसी ही चल रही है, संदेश बिल्कुल सही प्रचारा जा चुका है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या आपको एहसास होता है कि हम किन दिनों में रह रहे हैं? अब आगे क्या बचा है? उन्होंने उसको नहीं पहचाना, इनको नहीं पहचाना, कुछ समय को भी नहीं पहचाना, और यही वजह है न पहचानने के कारण से उन नूह के जमाने के लोगों के बीच में से सारा संदेश चला गया और वो लोग बर्बाद हो गए। जैसा आज हो रहा है ऐसा ही पहले भी हुआ था। उस जमाने के लोग अंधे हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक वहाँ पे सिद्धांत पाए जाते थे, बहुत ज्यादा शिक्षा पाई जाती थी, बहुत ज्यादा सेमिनरीज का ज्ञान पाया जाता था। ऐसे ही आज भी अंधे हैं। और जैसे पिछले जमाने में लोगों की आंखें अंधी हो गई थी, बिल्कुल ऐसा ही आज भी हो रहा है दोबारा से, क्योंकि संदेश बहुत ही साधारण है और संदेश साधारण होने की वजह से समझ में नहीं आता। नूह तो एक सीधा सच्चा सा आदमी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बेचारा गरीब किसान था, नम्र व्यक्ति था और उसके पास भी सीधा सा संदेश था, और चूंकि बहुत सीधा संदेश था इसलिए ऊंची अकल वालों के वो संदेश समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही आज भी है, खुदावन ने संदेश को बिल्कुल सीधा बनाकर रखा है ताकि जो विश्वास करने वाले हैं वही केवल विश्वास कर सकें। आज का संदेश नूह के संदेश से फर्क है, लेकिन खुदा वही वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान जाएं, आप इस बात पर विश्वास करें कि यह संदेश खुदावन ने ही दिया है। यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने अर्थात नूह के जमाने वाले लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, उसको तुच्छ समझा, ऐसा ही यीशु मसीह की आमद के समय भी होगा। ऐसा ही फिरौन के साथ हुआ, उसने भी अपने समय को नहीं पहचाना कि उसकी आंखों के सामने क्या घटनाएं चल रही हैं। वो इतना ज्यादा ज्ञान में उठा हुआ था, अपने ज्यादा मेहनत पे इतना भरोसा करता था क्योंकि उसने बड़े बड़े शहर बनाए थे, उसके बाद बहुत सारे गुलाम मजदूर पाए जाते थे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आज भी होगा। फिरौन बहुत ज्यादा व्यस्त था, उसने इस बात को नहीं पहचाना कि उसको एक मौका दिया जा रहा है ताकि वो खुदावन की ओर मुड़े। उसने क्या किया, खुदा के द्वारा भेजे गए नबी को, संदेश वाहक को अपने बीच में से निकाल दिया क्योंकि उसने खुदा के नबी को नहीं पहचाना। और यही कारण है न पहचानने की वजह से उसने खुदा के नबी को अपने बीच में से निकाल दिया। यदि खुदावन के वचन को और उसके नबी को पहचाना होता, उन लोगों ने जाना होता, और वैसे ही आज की कलीसियाओं ने यदि आज के संदेश को पहचाना होता, उस खुदा के वचन को पहचाना होता जो कि उनके लिए भेजा गया है और समय का संदेश है, वो कभी भी बर्बाद ना होते। यदि अमेरिका ने पहचाना होता कि उसका संविधान कहाँ से लिया गया है, तो आज वो बाइबल्स को स्कूलों में से ना निकालती। यदि उसे ये मालूम होता कि सिक्कों के ऊपर जो खुदा का नाम लिखा हुआ उसको हटाया ना जाए, जो वादे किए जाते हैं खुदा के नाम में होते हुए, लेकिन उसने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अंधे हैं और नंगे हैं, उन्होंने नहीं पहचाना उन जवानों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। आज वो भूले जा चुका है, आज वो बिल्कुल राख हो चुके हैं, लेकिन एक है जो इसे पहचानता है। जिन नबियों का खून बहाया गया, वो कीमत चुकाई गई ताकि ये शुभ संदेश मेरे और आपके पास आज पहुंच सके। कैसे हजारों लोग शेरों के द्वारा खाए गए, बड़ी बड़ी गुफाओं में फेंके गए, आरे से चीरे गए, जलाए गए, क्रूस पर लटका लटका के मारे गए, उनको खुदा पहचानता है। कलीसिया उन नबियों को भूल चुकी है, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन खुदा जानता भी है जिनको उसने बुलाया और निकाला है, अपने बच्चों को पहचानता है जिनको अपने वचन के द्वारा उसने काटा और छांटा है। वो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं और इसलिए आज के लोग उन्हें नहीं पहचानते हैं। कारण क्या है, क्या हालात रहे हैं, उसकी वजह यह है आज के लोग अंधे हैं, नंगे हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं और नहीं जानते कि हम इस प्रकार से हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपने समय को पहचाना, ना अपने जमाने के संदेश को पहचाना और ना ही इसके ऊपर कभी गौर किया। मूसा ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया, उसने जब देखा खुदा का कलाम मेरी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, वो पहचान गया। मूसा ने पहचान लिया और उसे मालूम हो गया मैं क्या हूँ और मुझे आगे क्या काम करना है और मेरे जमाने के लिए पहले से ही क्या संदेश अर्थात प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए उसने किसी की फिक्र नहीं कही लोग क्या कहेंगे, और वो किसी से शर्माया नहीं और किसी से डरा नहीं। यदि हर एक पुजारी उसके विरोध में था, फिरौन उसके विरोध में था, हर एक अधिकारी उसके विरोध में था और उसे किसी रूप में सहमत नहीं था, लेकिन उसने पहचान लिया कब, जब उसने जलती झाड़ी में आग के सुतून को देखा, जब खुदा ने उससे बातचीत करी जलती झाड़ी में होते हुए, मूसा पहचान गया, उसे समझ में आ गया कि खुदा ने मुझको बुलाया है। इसलिए उसने किसी की चिंता नहीं करी, किसी से नहीं डरा, यहाँ तक कि राजा उसे भी नहीं घबराया। और जैसा खुदा के वचन में वादा किया था वो आगे बढ़ता है ताकि लोगों को निकाल के ला सके। जब उसने प्रभु के वचन को अपनी आंखों के सामने प्रमाणित होते देखा, तो उसने लोगों को तैयार किया कि इस गुलामी के देश से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कब हुआ, जब उसने देखा प्रभु का वचन मेरी आंखों के सामने सिद्ध प्रमाणित हो रहा है। याद रखिए, वो अपनी शिक्षा और दीक्षा को लेकर के मिस्र देश से बाहर निकला था, लेकिन जब उसने खुदा के वचन को पूरा होते देखा, अपनी आंखों से प्रमाणित होते देखा, जब उसने देखा खुदावन मुझसे बोल रहा है मैं जो हूँ तो हूँ, उसने किसी की फिक्र नहीं करी, फिरौन से नहीं डरा कि फिरौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या ये दुनिया वाले मेरे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। उसने जमाने की फिक्र नहीं करी कि लोग मुझे क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे और क्या मेरे साथ करेंगे। उसने केवल इस बात की चिंता करी कि खुदा का खौफ मेरे दिल में आ चुका है, खुदावन को मैं गलत ना समझ जाऊं या खुदा मुझको गलत ना समझाए, इस बात की तो मूसा ने चिंता करी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या समझेगा, इसकी उसने कतई चिंता नहीं करी। मूसा नहीं समझ सका कि मेरे जैसा एक छोटा इंसान क्या कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसने प्रभु के वचन को अपनी आंखों के सामने प्रमाणित होते देखा तो उसने चिंता नहीं करी राजा की आज्ञा टालने का क्या परिणाम होगा। यदि आज आप केवल पहचान जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मूसा ने अपने जमाने में पहचान लिया, अपनी आंखों से प्रभु के वचन को पूरा होते हुए देखा, इसलिए वो तैयार हो गया और लोगों को भी उसने तैयार किया कि गुलामी से निकलने के लिए चलो। अय्यूब ने कभी नहीं पहचाना कि वो खुदा है। जब तक शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको परेशानियों में से गुजरते देखता है, वो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है ये सब मुसीबतें जो आपके ऊपर आ रही हैं, ये खुदावंद आपको सजा दे रहा है। लेकिन अय्यूब के किस्से में खुदावंद था जो कुछ समझाना चाह रहा था। और जब तक अय्यूब ने भी मूसा की तरह दर्शन नहीं देखा, और जब मूसा ने देखा उस दर्शन में कि एक जलती हुई झाड़ी में से आग निकल रही है, उसके सामने सारी बात सिद्ध और प्रमाणित हो गई। वैसे ही अय्यूब एक सवाल करता है खुदा से, क्या मनुष्य मरने के बाद दोबारा जी सकता है? मैंने पेड़ों को मरते और दोबारा जीवित होते देखा है, मैंने फूलों को भी मरते दोबारा जिंदगी हासिल करके देखा है। लेकिन उसका सवाल यह था, जब मनुष्य गिर जाता है, मनुष्य जब मर जाता है, उसका प्राण निकल जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। उसके लड़के आते हैं, रोते हैं और दुख मनाते हैं, लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो बोलता है, अरे खुदावंद तू मुझे कब्र में छिपा ले जब तक ये तूफान ये मुसीबतें मेरे ऊपर से गुजर न जाएं। अय्यूब की समझ में नहीं आया, एक पेड़ तो मर जाता है और जी जाता है, फूल गिर जाता है दोबारा आ जाता है, पत्ती झड़ जाती है फिर दोबारा निकल आती है, लेकिन जब मनुष्य मरता है जमीन के अंदर चला जाता है, मैं विश्वास तो करता हूँ वह मरता है लेकिन उसका क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और खुदावंद का आत्मा उस अय्यूब नबी के ऊपर आ गया और उसने देखा मनुष्य का पुत्र आ रहा है जो अपने हाथ को एक गुनहगार इंसान के सर पर रखता है और तमाम उसके गुनाहों को दूर कर देता है। तब वो चिल्लाता है, अब मुझे मालूम हो गया मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और यदि इस जिस्म का फना हो जाता है, इसको कीड़े खा जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने सृजनहार का दीदार करूंगा। उसने पहचान लिया पुनरुत्थान क्या चीज है। बालाम नहीं पहचान सका ईश्वर दूत उसका सामना करने के लिए रास्ते खड़ा है, लेकिन एक गधा जो कि बोल नहीं सकता उसने भी इंसानी जबान में बातचीत करी। बिलाम ने कभी भी नहीं पहचाना कि स्वर्गदूत उसका विरोध करने को खड़ा है। बिलाम एक ऐसा अंधा प्रचारक था जो नहीं पहचान पा रहा था कि खुदा ही उसका सामना करने के लिए रास्ते में खड़ा है। वो तो अपने बर्थराइट को बेचने के लिए जा रहा था, उस गिफ्ट को बेचने के लिए जा रहा था पैसे के बदले जो खुदा ने उसको दी हुई थी। और जब गधे ने इंसानी जबान में बातचीत करी, तब बिलाम ने पहचाना कि खुदावन का दूत मेरे रास्ते में खड़ा हुआ है मेरा सामना करने के लिए, और तब उसकी समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंधे डिनोमिनेशन, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता, यदि खुदावन एक गधे को इस्तेमाल कर सकता है जो इंसानी जबान ना तो जानता है ना तो बोलता है, एक प्रचारक को लाइन पे लाने के लिए, तो क्या वह एक इंसान को इस्तेमाल नहीं कर सकता है? अरे अंधे लोगों, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता? यदि आपने अपने जमाने को पहचाना होता तो वो उस नबी को जिसका नाम मीका आया था, जो खुदा की ओर से प्रमाणित था और अपने जमाने का संदेश लाया था, उसका इनकार नहीं करता। जब एक दिन अहाब और उसके साथ यहोशापात दोनों राजा एकत्रित हुए और 400 लगभग सिखाए हुए नबी अहाब राजा के नबूवत कर रहे थे कि बात क्या तू आगे बढ़, लड़ाई लड़, तेरा भला ही होगा और कल्याण ही होगा। यहाँ आप तो गुनाह में है, लेकिन हम बहुत बड़ा एक डिनोमिनेशन है, हम लोग बड़े सामर्थ्य लोग हैं, हम तो सिखाए हुए प्रचारक भाई लोग हैं और हम लोग 400 के लगभग पुजारी हैं अर्थात नबी हैं। हम लोग लगभग 400 सिखाए हुए ऐसे प्रचारक हैं जो खुदावन के कलाम में महारत हासिल रखते हैं और हम प्रभु के संदेश को और वचन को पूरा पूरा जानते हैं। ये इस बात का प्रमाण है उन्हें कुछ नहीं मालूम था। और एलिय नाम का ऐसा नबी था जिसको लोगों ने पागल समझा, अपने जमाने में खुदा का भेजा हुआ वो नबी था, उसने कहा था खुदावन यूं फरमाता है अहाब कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। लेकिन उन पुजारियों ने जो कि मनुष्यों के द्वारा नबी डिक्लेयर किए गए थे, उन्होंने कहा सब चीजें ठीक हैं, आए हमारे पिता आहाब, आगे बढ़ जा क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। उन चार सौ ने कहा, हमारे पास खुदावन का वचन है, ये देश इसराइल है और ये जमीन इसराइल की है और ये हमारी है, इसलिए बाल चाहू आगे बढ़, खुदावन तेरे साथ है। लेकिन यहोशापात तो आप जानते हैं, वो आहाब के गुनाह में सम्मिलित नहीं था, उसको कुछ और ही बात दिखाई दे रही थी। उसने कहा, क्या यहाँ पर कोई और भी नबी पाया जाता है? आहाब ने कहा, हाँ एक है हमारे पास, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ। कारण क्या है? खुदावन अपने नबी के द्वारा अपने लोगों को काट रहा था, छांट रहा था। मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि कभी भी वो मेरे भले की बात नहीं बोलता, हमेशा मेरे विरोध की ही बात बोलता है। हमारे पास इतने महान लोग हैं तो सही, और जो सेमिनरी ट्रेंड होकर के आए हुए हैं, बड़े बड़े जबरदस्त विश्वासी हैं तो हमारे पास, और हमारे पास बहुत शिक्षा पाए हुए लोग पाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पंडित पुजारी पाए जाते हैं, उनके पास बाइबल है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, और वो हर बात में ट्रेंड है। मैं जानता हूँ ये बहुत ही जबरदस्त वचन का ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं। लेकिन आपने यदि इस छोटे से इंसान को पहचाना होता, जो देखने में बड़ा ही अजीब सा दिखाई देता था, इमला का बेटा था, उसके सामने खड़ों से बोल रहा था खुदावन ही फरमाता है, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त से गलती कर दी। आहाब ने नहीं पहचाना कि मीका या खुदावन से उसे भेजा गया एक नबी है। आए लोगों, इस समय को पहचान लो कि तुम किस जमाने में रह रहे हो। जरा निगाह उठाकर देखो क्या कुछ हुआ है, देखो जरा क्या वायदा किया गया है। अपने समय को पहचानो किस जमाने में तुम रह रहे हो। यदि आज जिनोन मिशन ने पहचाना होता कि क्यों उनको दोषी ठहराया गया है, क्यों उनके सदस्य उनको छोड़ छोड़ कर भागते जा रहे हैं, जैसे कि इस्राएल मिस्र में से बाहर निकल आया, यदि आज इन डिनोमिनेशन की समझ में आ जाए, वो इन टेप्स को सुनने लगे और देखने की कोशिश करें इसमें क्या बोला जा रहा है, बजाय इसके कि इसको दोषी ठहराएं। और आए प्रचार को यदि तुम इन टेप्स को सुनो और पहचानने की कोशिश करो, तो हमारी समझ में आएगा कि तुम्हारा गुनाह क्या है, आज का समय का निशान क्या है, समझ में आ जाएगा। और तब ये भी समझ में आएगा क्यों लोग डिनोमिनेशन छोड़ छोड़ करके बाहर भागते चले जा रहे हैं। खुदावन का आत्मा लोगों को बुलाता चला जा रहा है। उसने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच न ले, और जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो अवश्य ही मेरे पास आएगा। इस प्रकार से उस स्त्री ने कुएं पर जो पाई जाती थी, वो कैसे अपने विचारों में भिन्न थी उनसे, उन प्रचारकों से, उन पंडित और पुजारियों से जो शहर में पाए जाते थे। लेकिन अजीजों, दीवार पर तो हस्तलेख चल रहा है दोबारा से, और लोगों ने नहीं पहचाना है। यदि यहूदियों ने पहचाना होता उस मसीह को, उस चिन्ह को जिसके बारे में मलाकी नबी ने तीसरे अध्याय में पहले ही लिख दिया था, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ जो मेरे लिए राह तैयार करेगा, और उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो भी उस दूत का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे पहले घटना घटी थी वैसे ही आज भी घट रही है, और आज भी तमाम डिनोमिनेशन का कलीसियाओं का यही वायदा है, हम भी किसी घटना के होने के इंतजार में हैं। कलीसियाओं में कहा जा रहा है प्रार्थना करो, उपवास करो, क्योंकि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, एक हो जाने की आवश्यकता है। और लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली है, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम सब एक हो जाएं, सारी कलीसियाएं मिलकर एक हो जाएं और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। और ऐसा ही पुराने जमाने में भी लोग कर रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम में यूहन्ना ने आकर के उन तमाम सेमिनरीज को जो इसराइल और यहूदियों की पाई जाती थी उन सबको दोषी करा दिया। उसका प्रचार सेमिनरी वाले प्रचारकों से बिल्कुल फर्क था। वो जंगल में से बिना पढ़ाई लिखाई के बाहर निकल के आता है और लोगों से बातचीत करता है। अगर आज की भाषा में कहें, वो कॉलर खड़ा करके बाहर आया और उसने लोगों से जो कि थियोलॉजी पढ़कर आ रहे थे उनसे आमने सामने बातचीत करी। वो कोई धार्मिक शिक्षा लेकर के नहीं आया, लेकिन खुदावन ने जो वादा कर रखा था कि मसीह आने वाला है उसका अनाउंसमेंट करने के लिए आया। यूहन्ना ने कहा, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे बीच में मौजूद है, लेकिन लोगों ने उसे पागल समझा क्योंकि वो यहूदियों की सेमिनरी में से नहीं आया था। उन्होंने उस लिखाई को नहीं पहचाना जो दीवार पे चल रही थी। उन्होंने तो इस बात का दावा किया कि हम एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाला है, जबकि वो उनके बीच में मौजूद था, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना जबकि वादा यही करते रहे हम उसके इंतजार में हैं। और जैसे कि यहूदियों के साथ हुआ वैसे ही अन्य जातियों के साथ हुआ, दोनों ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम अपने जमाने में एक महान घटना का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लौदीकियाई काल के अन्य जाति डिनोमिनेशन ये क्यों अंधे हैं? क्योंकि इनके बारे में पहले से नबूवत है कि ये अंधे ही होंगे, और ऐसा होना जरूरी है। यदि इसराइलियों ने अपने समय के चिन्ह को पहचाना होता, उन्हें मालूम हो जाता मसीह बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। यदि उन्होंने पहचाना होता, आप तो जानते ही हैं, एक दिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि शास्त्रीय फरीसी क्यों कहते हैं एलिया का पहले आना अवश्य है, और यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, जैसा कि लिखा हुआ था वैसा ही पूरा होना था। यीशु मसीह बोलते हैं उन्होंने तो एलिया को जान से मार दिया जैसा वचन में लिखा था और नहीं पहचाना। यदि उन्होंने पहचाना होता कि वही जो मूर्ख का पागल से दिखाई देने वाला है, जो उनके हर एक बुरे काम की भर्त्सना करता है, जो उनको सदैव दोषी ठहराता है, उसी यूहन्ना ने कहा आए पाखंडियों, आए घास में छिपे हुए सांपों, आए सांपों की औलादो, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? और तुम अपने अपने मन में ये ना सोचो हमारा पिता इब्राहिम है या ये है या वो है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ खुदावंद इस काबिल है इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतानें पैदा कर सकता है। इस बात को ना सोचो कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस हमारी है, हमारे पास अच्छे पढ़े लिखे अच्छे वस्त्र पहनने वाले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद इस काबिल है इस कुछ न समझने वाले छोटे छोटे चूहों में से भी अपने लिए बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि वो योग्य है कि अपने वचन को पूरा करे। इन वेश्याओं में से, सड़क पे चलने वाले लोगों में से, इन शराब पीने वाले लोगों में से, जुआ खेलने वाले लोगों में से खुदावंद इस योग्य है अपने काबिल लोगों को निकाल ले और बना दे। अरे अंधे डिनोमिनेशन, जैसे इसराइल अंधा हो गया था वैसे ही आज के लोग भी अंधे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ इन दोनों बातों को आप देख लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से मेल खाती हैं। मैं उस स्थान पर आपको लाना चाहता हूँ जहाँ मैं चाह रहा हूँ। आज भी लोग अंधे हैं, सभी डिनोमिनेशन के लोग अंधे हैं, अन्य जातियों के लोग जो कि लौदीकिया काल में पाए जाते हैं इसी प्रकार से अंधे हैं जैसे कि पिछले जमानों में हुआ करते थे। जैसे मलाकी 4 में कहा गया है लौदीकिया काल को एक संदेश ग्रहण करना है, लेकिन वो लोग किस बात के इंतजार में है? हमारे डिनोमिनेशन में से ही वो संदेश आएगा, चाहे हम बैप्टिस्ट हो, चाहे प्रेस्बिटेरियन हो, चाहे असेंबलीज ऑफ गॉड के हो, चाहे वननेस वाले हो, या किसी प्रकार के, यदि वो संदेश आएगा तो हम में से ही आएगा, तब तो वो सत्य है वरना नहीं। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों में किया था वैसा ही आज भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने असमय के संदेश को नहीं पहचाना, वचन को नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने भी कहा है उनके बारे में कि जैसा लिखा हुआ है वो वैसा ही करेंगे, मनुष्य के पुत्र को नहीं पहचानेंगे और उसका तिरस्कार अर्थात इनकार भी करेंगे। और जैसे मलाकी 4 में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही अन्य जातियों के दिनों में भी होना है। यीशु मसीह ने कहा प्रत्येक वचन खुदा की प्रेरणा से लिखा गया है और एक भी शब्द काबिल नहीं है कि इसमें से घटाया या हटाया जाए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना वचन लिखा है लाजमी है कि वो पूरा का पूरा ही घटे। यीशु मसीह ने भी कहा ऐसा ही होगा और आज हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने चल रहा है, हम अपनी नंगी आंखों से उसे देख रहे हैं। किस बात की बहालियत होना है आई डिनोमिनेशनल में पाए जाने वाले मेरे भाइयों, उस असली त्योहार का जो कि पेंटिकॉस्टल पर्व के नाम से जाना जाता है उसकी बहालियत होना है। जैसा कि पहले हुआ था वैसे ही अब भी बहालियत होगी, इससे पहले इसराइल की तुरहियां फूकी जाए और उनका अपना कार्यक्रम शुरू हो। जैसे मलाकी 4 में भी लिखा हुआ है कुछ तो बहालियत होना ही है। किस बात की बहालियत होगी? जो विश्वास पितरों के अंदर पाया जाता था वही विश्वास बच्चों की ओर परिवर्तित होना है। यदि इसराइल ने अपने जमाने के चिन्ह को पहचाना होता अर्थात मसीह को पहचाना होता तो आज वो वहाँ ना पाए जाते जहाँ आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने क्यों नहीं पहचाना? बड़े शर्म की बात है, लेकिन चूंकि खुदा ने कहा था वो नहीं पहचानेंगे इसलिए उन्होंने नहीं पहचाना। कितने आप में से इस बात पर विश्वास करते हैं? मेहरबानी से आमीन कहें। खुदा ने कहा था वो नहीं पहचानेंगे और ठीक वैसे ही हुआ। ऐसे ही खुदा ने कहा है लौदीकियाई कलीसियाई काल में भी होगा और ये हमारी आंखों के सामने आज घट रहा है। यदि उन्होंने अपने जमाने के चिन्ह अर्थात मसीह को पहचाना होता जो कि आज के लिए दिया गया है, क्योंकि खुदावन जो है वो 3 बेटों के नाम में जाना जाता है, मनुष्य के पुत्र के रूप में, और मनुष्य के पुत्र के रूप में ही आया, और वो अर्थात खुदावन यीशु मसीह पेंटेकोस्ट जमाने में पवित्र आत्मा के रूप में अर्थात खुदा के बेटे के रूप में काम करता रहा। और अब अगली बात जो है वो 1000 साल की बादशाहत है जो कि दाऊद के पुत्र के रूप में घटेगी। ये 3 बेटे लेकिन खुदावंद एक ही है और वही खुदा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होता हुआ काम कर रहा है, लेकिन खुदा एक ही है। दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, खुदा का पुत्र, ये सब एक ही खुदा के टाइटल्स हैं और इन 3 अलग अलग टाइटल्स में होता हुआ वो एक ही खुदा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये 3 खुदा नहीं है लेकिन एक ही खुदा है। ये उसके कार्य करने के अलग अलग ऑफिसेज हैं जो कि एक पिता का ऑफिस है, एक पुत्र का है और एक पवित्र आत्मा का है। लेकिन आज की तरह ही पहले भी लोग अंधे हो गए थे, अपने रस्म रिवाज में इतने अंधे थे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो क्यों नहीं ऐसा देख सकते और क्यों नहीं ऐसा देख पाएंगे? क्योंकि आपको ये वचन ध्यान है, ये वो वचन है खुदावंद यूं फरमाता है। आप बोलेंगे आप ऐसा किस क्यों कह रहे हैं, जैसा यूहन्ना के जमाने में कहा गया, बाकी लोगों ने कहा कि एक यहाँ फंसा हुआ है, दूसरा वहाँ फंसा हुआ है और इन्हीं में से लोगों को बाहर निकल के आना है। हे खुदावंद की भेड़ो, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। और उस औरत को पहचानने की कोशिश करिए, देखिए जिसने अपने जमाने के मसीह अर्थात चिन्ह को पहचान लिया, यदि उसका हाल बहुत ज्यादा खराब था और वो उन बेवकूफियों में नहीं फंसी हुई थी जो उस जमाने की कलीसियाएं अर्थात पुजारी लोग कर रहे थे। वो जो उस जमाने के पुजारी लोग थे जो कि अपने रस्म रिवाजों में लगे हुए थे, उन सिद्धांतों में वो औरत विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था एक दिन एक खास व्यक्ति आने वाला है। और वो स्त्री जब कुएं पर जाती है तो जिस व्यक्ति का, जिस चीज का वो इंतजार कर रही थी वो उसको मिल जाता है, जबकि उसने उस स्त्री के हृदय के भेदों को प्रकट करके बता दिया। और उस यीशु मसीह ने उस स्त्री के हृदय के भेद बताए और ये बताया किस गुनाह में वो जी रही है। तब वो स्त्री बोलती है, महाशय मैं विश्वास करती हूँ कि जो नबी आने वाला था वो तू ही है क्या, क्योंकि हमारे बीच में लगभग 400 साल से कोई भी नहीं आया। वो स्त्री बोलती है, मैं सोचती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जो नबी आने वाला था वो हमें ऐसी ही बातें बताएगा, दिल के भेद खोलकर समझाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं वही हूँ। इसको सुनते साथ ही वो स्त्री पहचान गई और बाकी सवाल जो उसके हृदय में पाए जाते थे उनको फिर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसके सामने एक सिद्ध नबी खड़ा हुआ था। जब मसीह आएगा तो इसी प्रकार के कार्य करके दिखाएगा। और जब उस स्त्री ने, क्योंकि वचन में लिखा हुआ था, पहचान लिया कि वही मसीह है, तो क्या हमारे पास जो शान की रोशनी आई हुई है, जो चिन्ह आया हुआ है, क्या हम उसके द्वारा नहीं पहचान सकते? और उसने कहा, जब मसीह आएगा वो हमें ऐसे ऐसे चिन्ह प्रकट करके दिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बातचीत कर रहा हूँ, जिसका तू इंतजार करती आई है। और फिर उसके बाद उस स्त्री के हृदय में कोई सवाल नहीं बचा, बल्कि वो बस्ती में जाती है और बोलती है, आओ लोगों, देखो उस शख्स को जो यहाँ मौजूद है, क्योंकि सारे सवाल उसने मेरे प्रकट करके बता दिए, मेरे भेद प्रकट करके मुझे समझा दिए। हर बात वहीं पर स्थिर हो गई और उसने पहचान लिया कि ये वही मसीह है। ऐसा ही नथेनिल ने भी किया, जो कि एक महान इब्रानी विद्वान था। जब उसने देखा कि मसीह का चिन्ह उसके सामने प्रकट हो रहा है जिसका वायदा किया गया था, फिर उसने फिकर नहीं करी लोग क्या कहेंगे, पंडित और पुजारी क्या कहेंगे। और उसने क्या किया, फरीसी लोग पुजारी लोग परेशान हो गए, कलीसिया छोड़ छोड़ के जाने लगे। और तब वो बोलते हैं, यदि तुमने उसकी मीटिंग्स को अटेंड किया तो हम निष्कासित करेंगे, तुम्हारा हम बहिष्कार करेंगे, तुम्हें अपने डिनोमिनेशन में से निकाल देंगे। ऐसा ही आज भी है, यदि तुमने उसकी मीटिंग अटेंड करी हम तुम्हें अपनी संस्था में से निकाल देंगे। क्या आपको संदेह का ध्यान है? ऐसा ही उस संदेह के साथ भी हुआ। उस संदेह के माँ बाप ने, क्योंकि वो डरते थे, कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अंधा जो कि यीशु मसीह की मीटिंग को अटेंड कर रहा था, उसके बारे में लोगों ने कहा, हम तेरा बहिष्कार कर देंगे। लेकिन वो अंधा व्यक्ति अपने बारे में खुद ही बोलता है, क्योंकि मैं एक समय अंधा था और बाद में ठीक कर दिया गया, मैं भी अंधा था और आज मैं देखता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सारी चीजें मुझ पर प्रकट कर दी हैं, मुझे दिखा दी हैं। और डिनोमिनेशंस में से लोग छूट छूट कर बाहर आते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, डर रहे हैं कि कोई आ रहा है छुड़ाने वाला। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा बहुतों को अपने पास खींच ले आऊंगा। नथेनिल ने उसे पहचान लिया और उसको जान लिया, जैसे कि मूसा के जमाने में हुआ। वचन का ये प्रमाण था और वो भी सिद्धांतिक रूप से प्रमाणित हो चुका था। मूसा इस बात को जानता था कि मेरे जमाने का क्या संदेश है, क्योंकि वचन में पहले से ही वो लिखा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी अजीब सी बात है। मूसा बोलता है कि मैं क्यों ना इस बात को कहूँ, क्योंकि मैंने वो जलती झाड़ी में से जंगल में इस बात को सुना और देखा है। और बोलता, मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि मैंने जलती झाड़ी में से रोशनी देखी। और उसने मुझसे कहा, तू आगे जा, लेकिन आवाज आती है, मूसा मैं अवश्य सदैव तेरे साथ रहूंगा। और उसने केवल आश्चर्य कर्म ही करके नहीं दिखाया मिस्र में, बल्कि बहुत बड़े कामों के द्वारा, जब वो निकाल लाया इस्राएलियों को बाहर, दोबारा से उसने दर्शन दिए। और मूसा चूंकि खुदा का चुना हुआ व्यक्ति है, मूसा की सेवकाई खुदा की ओर से है, उन चुने और बुलाए हुए लोगों के लिए इस बात को भी खुदा ने प्रमाणित करके दिखाया। जब वो नबी मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के बाहर ले आया, और एक जगह जब वो इकट्ठे होते हैं तो दोबारा से वो आग का सतून प्रकट होता है जो कि सीने पहाड़ पर नजर आता है। आज भी घटना वैसे ही चल रही है, और खुदावंद का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीवन से भी ज्यादा कीमती है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्र भी रोजाना बढ़ती चली जा रही है, और सारे संसार में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है, बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, सारे देश इसमें फंस चुके हैं। लेकिन जब मैं पीछे की ओर निगाह करके देखता हूँ, मेरा हार्ट, मेरा दिल खुशी से कूदने लगता है। एक बात को जानते हुए कि मेरा पृथ्वी पर का मेरा शरीर का घर गिराया जाएगा और एक दूसरा शरीर है जो मेरा इंतजार कर रहा है ताकि मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। और मैं जानता हूं मैं लोगों को इस प्रभु के वचन के द्वारा काट काट कर छाट छाट कर ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो तुम्हारी आंखों के सामने खुदावंत का वचन है, ये सिद्ध वचन तुम्हारी आंखों के सामने है कि आज का खंभा तुम्हारे सामने है। हजारों लोगों ने सैकड़ों लोगों ने इसको देखा है और यहां तक कि कैमरे के द्वारा इसकी फोटो भी ली गई है जो एक प्रमाण के बतौर आपके सामने पाया जाता है। नकल करने वाले धोखा देने वाले जरूर उठ खड़े होंगे क्योंकि उनका होना जरूरी है, ऐसा लिखा हुआ है। जैसा मूसा के दिनों में हुआ था वैसा ही अब भी होना है। खुदावंद ने कहा है अपने आप को मूसा तू इनसे अलग कर ले क्योंकि मैं इनको सजा दूंगा, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, मैं इनको फना कर दूंगा। और ऐसा ही आज संसार में चल रहा है। यदि आप पीछे जाकर के देखें संसार में आपको बहुत पैसा दिखाई देगा, चारों प्रकार के हर प्रकार की स्कीम दिखाई देंगी, चारों ओर संसार उन्हीं से भरा हुआ है। मूसा तो खुदावंद के वचन का एक निशान था, वो बहुत महान नबी था, खुदा की ओर से भेजा गया था ताकि इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आए और लोगों ने उसे पहचान लिया, उस दिन को लोगों ने पहचान लिया और खुदावंद के वादे और वचनों को प्रमाणित करता हुआ मूसा उनके बीच में पहचान लिया गया। और ऐसा ही यीशु मसीह के साथ ही था, वो वचन का प्रमाण था उस औरत के सामने जो कि कुएं पर मिली थी। यीशु मसीह तो खुदावंद के कलाम का खुद ही खुलासा है और यीशु मसीह का जीवन इस बात को प्रकट करके दिखाता है कि वचन उसके जीवन से जाहिर हो रहा है। क्या आप समय के संदेश को देख रहे हैं? क्या पहचान पा रहे हैं? आज का संदेश अपने आप में ही प्रमाण है, वचन को खुलासा करके दिखा रहा है और समझा रहा है कि हम कौन से जमाने में हैं। ये अपने आप में खुद ही प्रमाण है। एक दिन यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर बैठ करके कहा, आए इसराइल, यदि तूने अपने घड़ी को और अपने समय को पहचाना होता, आए यरूशलेम, आए यरूशलेम। और ऐसा कहकर यीशु मसीह रोने लगा। और जब यीशु मसीह निगाह करके नीचे देखते हैं तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि उस रात में जब रात के लगभग 10 बजे मेरे को एक दृश्य दिखाया गया उस कलीसिया का जो कि फहशा अर्थात एक वेश्या के रूप में थी। और आप अपने दिल में जानते हैं किस प्रकार से जैसे मान लो पवित्र आत्मा आंसू बहा रहा हो, आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, मैंने कितनी ही बार चाहा कि तुझे बचा लूं, लेकिन क्या हुआ, तूने तो नबियों को ही मार डाला जो मैंने तेरे बीच में भेजे। और आज संदेश कलीसियाओं के पास भेजा गया है और उसका भी डिनोमिनेशन ने कत्ल कर दिया अपने रस्मों के द्वारा, अपने रिवाजों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा। आज सारा का सारा वचन कत्ल किया जा चुका है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने अपने दिन को पहचाना होता, लेकिन अब तो बहुत समय गुजर चुका है, वक्त जा चुका है। और ऐसा ही आज कलीसियाएं कर रही हैं और उनके साथ हो रहा है। और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ कि कलीसिया अपने छुटकारे से बहुत दूर निकल चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या विचारधारा है, मैंने आपके सामने अपने ख्याल रखे हैं और जरूरी नहीं है कि मेरे ख्याल और आपके ख्याल एक जैसे हों, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज नहीं बल्कि लगभग 5-6 साल पहले से ही कलीसिया उस छुटकारे के राह से दूर जा चुकी है। मैं याद करता हूँ और आप भी याद करते होंगे शिकागो में, आप देखिए शिकागो में क्या कुछ हुआ और उसके बाद से क्या कुछ होता चला जा रहा है। आपको ध्यान होगा मेरा नाम वहाँ पर पाया जाता है और लिखा हुआ है क्योंकि ये खुदावन यू फरमाता है वाला वचन है। और आप देखिए किस प्रकार से रोजाना गिरावट आती चली जा रही है। आपको 1933 वाले दर्शन का तो ध्यान होगा ही कि किस प्रकार से औरतें भद्दे भद्दे व्यवहार करेंगी अंतिम दिनों में, जबकि मुझे बताया गया था लोगों के बारे में किस प्रकार से मसलूनी आएगा और उसका अंत हो जाएगा, किस प्रकार से हिटलर आएगा और वो भी अजीबोगरीब तरीके से खत्म हो जाएगा, और किस प्रकार से तीन वाद आएंगे और तीनों वाद कम्युनिज्म में एक साथ मिल जाएंगे, किस प्रकार से मशीनें आगे ईजाद की जाएंगी और ऐसी कारें आएंगी जो कि अंडे के आकार की पाई जाती हैं, औरतें किस प्रकार से वस्त्र पहना करेंगी और आदमियों की तरह दिखने की कोशिश करेंगी, यहाँ तक कि जैसे अंदर पहनने वाले वस्त्र होते हैं इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनेंगे, मान लो अपने अंगों के आगे अंजीर की पत्ती लगा रखी हो, किस प्रकार से वो गंदे गंदे और अश्लील हरकतें और काम करेंगे। और ये आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने चल रहा है। यदि आज की मसीही औरतें, ये कहलाने वाली मसीही औरतें हैं, उन्हें केवल इतना पहचान में आ जाए ये जो बड़ी अश्लीलता और गंदगी की जो आत्मा उनके ऊपर सवार है ये शैतान की ओर से है, जो उनको ये सिखाता है कि अपने बाल काटो, ये शैतान की ओर से ही होता है क्योंकि ये काम प्रभु के वचन के विरोध में पाया जाता है। ऐसा ही उसने अवन की वाटिका में भी किया था और ये प्रभु के वचन के विरोध में है और वो कहते हैं हमें इससे क्या मतलब। यदि वो पहचान जाए कि जो आदमी प्रचारक है उसको जो बेवकूफ और बकवास के शब्दों से पहचाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्रभु का वचन है, मैं तो केवल उसको आपके सामने कोट करके दिखा रहा हूँ। यदि उन्होंने केवल उसको पहचाना ही होता तो समझ जाते शैतान काम करवा रहा है। मसीहों ने भी यदि पहचाना होता, जैसे यीशु मसीह ने कहा है तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा तो सुनते ही नहीं। मैं कोई जज नहीं हूँ, कोई न्याय नहीं हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि वो क्रिश्चियन नहीं है, मसीही कतई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे कैसे प्रभु बोलते हो जबकि मेरी आज्ञाओं का तुम पालन ही नहीं करते। सारा का सारा वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह का मुकाशवा है, वो बोलता है तुम मुझे प्रभु क्यों बोलते हो। यदि उन्होंने पहचाना होता कि शैतान का आत्मा है जो अश्लील हरकत उनसे कराता है और बुराइयां करवाता है। एक औरत से उसको मैंने देखा, मैंने जो देखा है जेफरसन विल को, इंडियाना को, एक औरत जो कि ऊपर वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनती, नंगी औरत को मैंने अपने जीवन में देखा। बहुत ही गंदा स्थान है ये। मैं हॉलीवुड में रहा हूँ और ऐसा ही दृश्य मैंने वहां पर भी देखा है। मैं संसार में बहुत इधर उधर घूम के आया हूँ, मैंने गंदगियों को खूब देखा है। मैंने पेरिस में भी देखा है, इंग्लैंड में भी देखा है। और इंग्लैंड का तो हाल ये है, तमाम जो गंदगी पैदा करने वाले देश है उनका समझिए मुखिया है। और मैं सोचता हूँ इंग्लैंड एकदम किसी दिन पानी के अंदर अर्थात समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि वो इसी काबिल है। उसमें दुनिया भर की गंदगी पाई जाती है और वो तो एक ऐसा गड्ढा बन चुका है अश्लीलता का और कामुकता का, जिसमें सारी दुनिया की कीचड़ और गंदगी पाई जाती है। और मैंने वचन के विरोध में चलने वाले और इनकार करने वाले जो लोग देखे हैं अपने जीवन में, इंग्लैंड वाले उनमें सबसे ज्यादा नंबर पे पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का इनकार किया। एक बार बिली ग्रहम ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को पार्क में से जल्दी बाहर निकाला, क्योंकि मैंने देखा आदमी और औरतों को, लड़के और लड़कियों को खुले रूप में पार्क में अश्लीलता करते हुए, कोई शर्म और कोई लिहाज उन्हें नहीं था। तो इस प्रकार से ये जो देश है गंदगी का अड्डा बन गया है, अश्लीलता और कामुकता का एक कहा बन गया है। फ्रांस में भी ऐसा हुआ और अमरीका आज उन सबके आगे आगे नेतागिरी कर रहा है। आज आप देखिए, ये अपने बाल काटते हैं, छोटी छोटी निकरें पहनती हैं, फ्लैक्स पहनती हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके ऊपर से अपने आप को विश्वासी बोलती हैं। क्या आपको एहसास नहीं होता बहनों? बहन क्या कहूँ, और तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको क्या दिखाई नहीं देता? क्या आपको बिल्कुल आभास नहीं होता? ये आत्मा दुष्टात्मा शैतान का है। और जैसे पुराने जमाने में यहूदियों ने किया कि वो अपने सिद्धांत और पर ही विश्वास करते रहे, जबकि खुदा की ओर से प्रमाणित वचन उनकी विधाओं के सामने था। इसी प्रकार से आज तुम्हारी जो डिनोमिनेशनल रस्म है वो सब ये कहते हैं ठीक है, सब चलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती। तुम्हारे भाषाएं में बोलते हो, दुनिया भर की पूजा फंडी करते हो, आत्मा में गाते हो, बाल भी काट लेते हो। क्या आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मसीह इस प्रकार की हरकत करेगा? मैंने तो आत्मा को देखा है, मैंने जादूगरों को देखा है और मैंने दुनिया भर की अन्य भाषाओं को बोलते हुए और उनका तर्जुमा करते हुए लोगों को देखा है, नाचते और कूदते और खेलते हुए देखा है। और ये सब कुछ मैंने आत्मा में होकर के करा। मैंने मनुष्य की खोपड़ी में खून भर भर के लोगों को पीते देखा है और उसके बावजूद भी यीशु मसीह के नाम को श्रापित करते देखा है। आप कहते हैं मैं कलीसिया का हूँ, फलानी कलीसिया का हूँ, हालेलुया आप बोलते हैं, खुदा की तारीफ करने के लिए आपके हाथ उठाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कलीसिया क्या है? कलीसिया खुदा का कलाम है और ऐसा करना आपके लिए शर्म की बात है जो आज तमाम डिनोमिनेशंस कर रहे हैं। और आए बंदे फरीसियों, तुम जो कि अंधों को ले जा रहे हो नरक की ओर, क्योंकि तुम डरते हो इस बात से कहीं तुम्हारा राशन पानी खत्म ना हो जाए, कहीं तुम्हें पैसा मिलना ना बंद हो जाए, कहीं तुम डिनोमिनेशन से बाहर खेल के ना फेंक के जाओ। लेकिन क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता ये शर्म की बात है पाखंडियों? और तुम्हें शर्म आना चाहिए। देख रहे हो समय आगे बढ़ता चला जा रहा है और अपने रस्मों की वजह से तुमने खुदावन के कलाम को टाल दिया है। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई है अंधे लोगों? क्या तुम्हें नहीं मालूम बाइबल में भी लिखा हुआ कि तुम अंधे हो? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता तुम अंधे हो? बाइबल कहती है ये अंधे हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं, नंगे हैं और नहीं जानते। क्या तुम सोचते हो कि हम तो कलीसिया वो वाली हैं जो शहर का सबसे बड़ी कलीसिया है और हम ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम बाइबल कहती है तुम बिल्कुल अभागे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एकदम अंधे हो। और वो आज भी तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है ताकि तुमको ये सुरमा बेच दे। सुरमा बेचने नहीं आया है बल्कि तुम्हें देना चाहता ताकि तुम इसे ले लो। लेकिन क्या होगा? जो वचन में लिखा है वही पूरा होगा। आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई और बहनों, आप कौन से जमाने में हैं? क्या आप घड़ी को पहचान पा रहे हैं? क्या आप चिन्ह को देख पा रहे हैं? केवल इस बात को पहचान सकते हैं। और तो ये सब शैतान की ओर से है। ये धर्म के नाम पर एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ये शैतान सभी काम कर रहा है। ये सब कुछ वही शैतान काम कर रहा है, उसका यही शुरू से तरीका रहा है। हर एक नबी के पास वैसे आया, हर एक पंत के पास वैसे आया, यहाँ तक यीशु मसीह के पास भी एक धार्मिक पुरुष के रूप में आया। और बाइबल बताती है अंतिम दिनों में भी वो ऐसा ही होगा, इतना ज्यादा सच्चाई से मिलता जुलता होगा, यहाँ तक कि जैसे पेंटिकॉस्टल पाए जाते थे। और यहाँ तक अगर हो सके तो धोखा दे दे जिनको, उनको जो कि बिल्कुल असली पेंटिकॉस्टल कलीसिया नजर आती है, यदि संभव हो तो ऐसा कर देगा। लेकिन उसने कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सीधा है वो रास्ता, सत्य है वो मार्ग, पानी है वो दरवाजा, जिससे कि थोड़े लोग प्रवेश करने वाले हैं। और जैसा कि नूह के दिनों में हुआ, जबकि आज ही जाने बच सके, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। इसके बारे में सोचिए। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्या आपने पहचाना है कि कौन से जमाने में हम रह रहे हैं, कौन सा दिन चल रहा है? मैं आपका वैसे काफी समय ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लेना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा समय और मुझे चाहिए अभी। और आपके कलीसिया वाले हैं, बाल काटने पर कोई एतराज नहीं करते, बल्कि कहते हैं सब ठीक है। आपको मालूम है वो सब अंधे हैं। आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बाल कटा लिए, बाइबिल कहती है पड़ता है। आप लोग ऐसे बेकार की बातें करते हैं कि बाल भी कटाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और उसे कुछ समझते ही नहीं। आप कहते हैं कि औरत को ढका हुआ होना चाहिए, बाइबल कहती है फिर ये बाल उसको कवरिंग के लिए दिए गए हैं, एक टोपी नहीं दी गई है बल्कि बाल दिए गए हैं ढांकने के लिए। क्या होता है कि मूसा कहता है कि प्रभु मैं बजाय जूते उतारने के अपनी टोपी उतार देता हूँ, तो उससे काम नहीं चलता, क्योंकि खुदा ने कहा था जूते उतार तो उसका अर्थ था जूते ही उतार। वैसे ही जब उसने कहा बाल तो उसका मतलब टोपी से नहीं बल्कि बाल ही है। खुदा का धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूँ उसको ये अच्छा लगता है। प्रभु की बहुत बहुत तारीफ हो। प्रभु जो कुछ भी कहता है, जो कुछ उसके वचन में लिखा है, वो अपने व्यक्तिगत खुलासे के लिए नहीं है। जैसा भी उसने कहा है उसका तात्पर्य सही है। कोई भी डिनोमिनेशन अपने अर्थों को न लगाए। आप कहेंगे कि फलानी औरत तो ऐसा करती है, मैं इस बात की फिक्र नहीं करता कि कौन क्या करता है। जो कुछ खुदा ने कहा है केवल वही करना है, आपको अपनी मर्जी पूरी नहीं चलाना। यदि आप पहचान सकें क्या कुछ कहा गया है तो मैं आपसे बोलूंगा, औरतों, सभी महिला नहीं लेकिन औरतों, मैंने एक चिन्ह देखा एक बार जब मैं एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था जिसका नाम ब्लू बोर्ड है। वहाँ पर एक बियर की दुकान थी और ये लगभग 5वीं सड़क की बात है। वहाँ पर मैंने टेबल पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा था केवल महिलाओं के लिए। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया और मैंने उनसे कहा आपको यहाँ पर कोई भी सभ्य महिला नहीं मिल सकती। हाँ, चालू किस्म की औरतें तो मिल सकती हैं, लेकिन सभ्य महिला ऐसे स्थान पे कभी भी नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की गिरावट सदैव औरतों के व्यवहार और आचार की वजह से हुई है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अंत भी ऐसा ही होगा? औरतें जो है अपने चरित्र में गिरती चली जाएंगी। और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कलीसिया जो है औरत के द्वारा दर्शाई गई है। आत्मिक रीति से यदि बोला जाए तो कलीसिया जो है वो एक औरत है और जो दुल्हन है वो भी एक औरत है। यदि आप चर्च की गिरावट की ओर देखें आपको साफ साफ दिखाई देगा, जैसा दर्शन में मेरे को दिखाया गया था और खुदावन ने जो कुछ मुझे दर्शन में दिखार बताया वो बिल्कुल सत्य है। और मेरी बाइबल जिसको मैंने अपने छाती से लगा रखा है, आप सब सुनने वाले भाइयों इस बात को गौर से सुन लीजिए, मैंने इसको देखा है, अपनी आंखों से देखा है दर्शन में। खुदावन इस बात का गवाह है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य है और एक बात भी गलत नहीं बोली गई है। मैंने जब स्त्री को देखा उस दर्शन में बिल्कुल नंगा देखा और वो नहीं जानती थी। और अब आप देख रहे हैं जब उस दुल्हन का समय आया कि वो दर्शन में आए, बिल्कुल वो फर्क थी, जैसे कि शुरुआत वाली वैसे ही अंत वाली दुल्हन थी। और जैसे पुराने जमाने में हुआ यहूदियों ने किया वैसा वचन में लिखा हुआ है। शैतान ऐसे कामों को करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अरे यीशु मसीह ने कहा वचन में ढूंढ करके देखो क्योंकि मेरे बारे में तुमको शक और शुभे होते हैं, वचन में ढूंढ करके देखो और वहां तुम्हें ये मिलेगा अनंत जीवन मेरे ही पास है और वचन मेरी ही गवाही देता है और मेरे बारे में वचन ही तुमको गवाही देगा। तुम मेरे वचन पर विश्वास यदि करो तो ये वचन ही मेरे गवाह हैं और यही तुमको बताएंगे मैं कौन हूँ। लेकिन यदि आप कहें कि हमें इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई इससे मतलब नहीं, हमारे पास अपने पुजारी हैं, अपने पादरी हैं वगैरह वगैरह है, तो मैं आपको बता दूं काफी समय गुजर चुका है, आपको जो जी में आए तो वैसा ही करिए। डिनोमिनेशन में अपनी अपनी रस्म और अपनी अपनी रिवाजें हैं और वो कहते हैं सब ठीक है और वो लोग इनकी बातों को सुनते हैं अर्थात सारी दुनिया वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप प्रभु के वचन में विश्वास करिए। लेकिन जमाना क्या कर रहा है, मनुष्य के वचन पे ज्यादा भरोसा करता है बजाय खुदा के वचन के। और वो लोग इन बातों को नहीं पहचानते अर्थात दुनियावी कलीसिया वाले इस बात को नहीं पहचानते कि दूसरा तीमोथियों उसके तीसरे अध्याय में क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इन वचनों को नोट कर रहे हैं, आयतों को लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं जो मैंने यहाँ नोट करी हुई हैं। यदि कोई मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहे या उनको जानना चाहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ऐसी आयतें लिखी हुई हैं। और वो लोग दूसरा तीमोथियों का तीसरा अध्याय नहीं पहचानते यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो बहुत घमंडी प्रवृत्ति के होंगे, सुख विलास के चाहने वाले होंगे, खुदावंश से दूर हटने वाले होंगे, वाचाओं को तोड़ने वाले होंगे, झूठे झूठे दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे और तुच्छ जानने वाले होंगे। किसको? अच्छी चीजों को, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। ये भक्ति का भेष तो रखेंगे लेकिन उसकी शक्ति को हरगिज़ न मानेंगे, ऐसों से तुम दूर रहना। क्योंकि इस प्रकार के लोग घर घर जाते हैं और ऐसी औरतों को जो कि ओछे किस्म की हैं अपने कब्जे में कर लेते हैं। और ऐसी औरतें हैं जो कि लालसाओं की ओर आकृष्ट होती हैं, अश्लीलता की ओर फिरती हैं। ये सीखती तो रहती हैं कि सत्य के ज्ञान को प्राप्त करें लेकिन कभी नहीं हासिल कर पाती। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगी, कभी भी सीख नहीं पाएंगी क्योंकि खुदावन ने कहा है और आई एम डेफिसिट यू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो एक खास पॉइंट की ओर आपका इशारा करना चाहता हूँ। और कलीसिया का भी यही हाल है, वो भी ऐसा ही करेंगी। ऐसी औरतें हैं जो इन बातों को सुनती हैं लेकिन बिल्कुल समझती नहीं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ओछापन पाया जाता है, बुरी बुरी लालसाओं से ग्रस्त पाई जाती हैं, जैसे कि हॉलीवुड में है, किस्म किस्म के वो अपने ऊपर मसाले लगाती हैं, बालों को काटती हैं, छोटी छोटी निकरें पहनती हैं, मेकअप लगाती हैं और इस प्रकार से बहुत सारी और भद्दी हरकतें करती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन अंतिम दिनों में औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है? क्या आप जानते हैं कि जैसे वचन हमको बताता है, जो इस बड़ी विपत्ति से अर्थात बर्बादी से बच जाएगा वो खुदा के सामने एक बहुत खूबसूरत शाखा की मानंद देखा जाएगा। किसी दिन मुझको मौका मिलेगा, यदि खुदावंद मेहरबानी करे तो आपके सामने इस बात को मैं शेयर करूंगा कि खुदा की मर्जी औरतों के बारे में क्या कुछ है, किस प्रकार से वो बुराई से बच सकती हैं। ऐसा खुदावंद ने कहा है कि वो मेरे सामने बहुत खूबसूरत एक शाखा की मानंद होंगी। मैंने एक औरत को देखा भी कुछ दिन पहले, एक लड़की थी वो जो कि करीब करीब आधी नंगी थी, उसको मैंने मजाक उड़ाते देखा और उसका जहां तक मॉरल का प्रश्न है वो बिल्कुल एक कुतिया से भी गिरा हुआ था। मैंने उस लड़की को एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाते और हंसते हुए देखा जो कि लंबे वस्त्र पहने हुए थे। इसको जरा गौर से सुनिएगा, वो जो लड़की थी मटकती हुई चली जा रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं पाया जाता था जो उस बूढ़ी औरत के अंदर था। उसने तो अपना चरित्र ही खो दिया था और वो लड़की केवल नाम के ही बारे में जानती थी। उसने तो सारे चरित्र को जब वो एक पालने में थी उसी समय खो दिया था और वो लड़की चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसके हृदय में कुछ भी नहीं पाया जाता था क्योंकि उसे कभी ऐसा मिला भी नहीं था और वो लड़की कुछ नहीं जानती थी, जबकि वो बुजुर्ग महिला थी। उसके हृदय में बहुत सारे भेद छुपे हुए थे, बहुत अच्छा चरित्र छुपा हुआ था जिसको एक छोटी लड़की ने बचपन में ही खो दिया था। वो लड़की से मैंने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें जन्म दिया उस समय तुम अपना चरित्र खोए हुए हो। आपका जो पास्टर है इस बात की अलाउ करता है कि आप ऐसा काम करें और ऐसी चाल चलें। मैं आपके पास्टर के बारे में अभी यही प्रचार कर रहा हूँ। आपने देखा आप कैसी कलीसिया के हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा सभी वचनों का पूरा होना जरूरी है और अब ये देखिए वचन पूरे हो गए। आपने ध्यान दिया, जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया वैसा ही अंतिम दिनों में भी होगा। और यहाँ कोई मेथोडिस्ट की बात नहीं हो रही, मेथोडिस्ट की बात नहीं हो रही, बैप्टिस्ट की बात नहीं हो रही, ये सब तस्वीर आपकी आंखों के सामने ही है। इसी प्रकार से यन्नेस और यम्रेस ने मूसा और हारून का सामना किया और उस दुराचारी मनुष्य अपने दिमागों के कारण से जो कि सत्य से फटके हुए थे उन्होंने अपनी रस्म और रिवाज बना लिए कलीसियाओं के अंदर और प्रभु के वचन को अर्थात बाइबल को छोड़ दिया। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने किया जो कुछ मूसा कर सकता था वो भी कर सकते थे। बिल्कुल ये दोनों समानांतर ही चल रहे हैं। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का सामना किया उसी प्रकार से इन्होंने सत्य से भटक करके इस सच्चे वचन के विरोध में खड़े हुए हैं और वो बिल्कुल आपके पड़ोस में पाए जाएंगे लेकिन किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे, किसी प्रकार से आपसे कोई सालुक नहीं रखेंगे, लेकिन उनका अंत जो है वो खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जब दुल्हन यहाँ से जाएगी, स्टैंड लेगी, आसमान में उठा ली जाएगी, चिंता मत करिए, उस दिन पता पड़ जाएगा कौन किस जगह पाया जाता है। जैसे कि मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के मिस्र देश से बाहर निकल आया तो सारा का सारा मिस्र जो था बर्बाद हो गया। यीशु मसीह ने कहा प्रत्येक वचन खुदा की प्रेरणा से लिखा गया है और इसमें जरूरी है कि प्रत्येक वचन पूरा हो जाए। उन्होंने यीशु मसीह से पूछा तू अपने आप को खुदा कहता है? यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम अपने वचनों में जब पढ़ते हो खुदा के कलाम में उन नबियों को जिनके पास खुदा का वचन पहुंचा उनको तुमने खुदा के बेटे कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम फिर मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जबकि मैंने अपने आप को खुदा का बेटा कहा? क्योंकि प्रत्येक वचन प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और उसको पूरा होना और प्रकट में आना जरूरी है। तो आपने देखा किस प्रकार से उनके अंदर अंधापन पाया जाता था। उन्होंने मनुष्य के वचन की ज्यादा कदर करी, अपने वचनों की ज्यादा कदर करी बजाय खुदावन के कलाम के। आप देखते हैं औरतों ने क्या कुछ कर रखा है, आप देख रहे हैं प्रचारक के लोग क्या कुछ करते हैं। ये लोग बिशप लोग बजाय यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लेने के पैसे के कारण से और दूसरे कारणों की वजह से अपने वचनों को इंसानी कलाम को ज्यादा ऊपर उठाते हैं और ज्यादा उसकी कदर करते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हैं और ये संदेश जो है और मैं कोई खास मशहूर नहीं है। यदि आप इन थोड़े से लोगों को जो जयपर्सन दिल में रहते हैं इस छोटे से ग्रुप को छोड़ दें, जो लोग बाहर से आते हैं अगर उनको निकाल दें तो आज सुबह यहाँ इस भवन में थोड़े से लोग भी नहीं रहेंगे, आधे दर्जन लोग भी नहीं रहेंगे जिनको मैं प्रचार कर सकूं। ये क्या हो रहा है? प्रभु की सुरंग जो है तमाम देशों से आए हुए लोगों से मिलकर बनी है। कुछ न्यूयॉर्क से हैं, मैसाचुसेट्स से हैं, बोस्टन से हैं, मेन से हैं, जॉर्जिया से हैं, अलाबामा से हैं और देश के कोने कोने के हिस्से से लोग आकर के यहाँ जमा हो रहे हैं। आमीन। खुदा ने कहा है कि शाम के समय उजियाला होगा और वो इस बात को नहीं पहचान सकते, शाम की रोशनी को देख नहीं पाते हैं। यही तो उनके साथ परेशानी है, उन्होंने नहीं पहचाना, पहचान नहीं सकते क्योंकि कलीसिया अंधी है। बाइबल में ऐसा बताया गया है। आप जानते हैं लगभग अभी 40 साल हुए हैं रूस ने वैज्ञानिक संसार में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। जब पहली लड़ाई हुई, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो लोगों ने यहाँ तक कि रूस को छोड़ दिया, उसकी ओर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि ये भी कुछ अपनी वैल्यू रखता है। भाई रॉय, आप तो जानते हैं उन अनपढ़ लोगों को, वो बड़े बड़े साइबेरियन लंबी चौड़ी कद काठी वाले, जिनके चारों ओर चेहरे पर दाढ़ी दाढ़ी पाई जाती थी, जिन्हें इतनी भी अकल नहीं थी कौन सा दाहिना हाथ है और कौन सा बायां हाथ है। ये सही बात है, वो था रूस। लेकिन उसने अपने स्थान को पहचान लिया, क्योंकि वचन को पूरा होना अवश्य था। उनके बारे में जो भविष्यवाणी करी गई थी, उसको आप जानते हैं किस प्रकार से वो सब कम्युनिज्म में इकट्ठे हो जाएंगे। और अब वो संसार में वैज्ञानिकों में सबसे आगे है, सबसे आगे ही आगे चल रहा है, यहाँ तक कि हम लोग भी उसके पीछे हैं। उसने अपने स्थान को पहचान लिया है, अर्थात रूस ने, और अपनी जगह को जान लिया है, क्योंकि उसके पास भी कुछ बुद्धिमान लोग पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के पास 6 इंद्रियां पाई जाती हैं, और ये 6000 साल से उसके पास हैं। इन्हीं के द्वारा से उसने इस दुनिया में रहते हुए, अपने शरीर में होते हुए खुदा से अपनी मुलाकात करी। और लगभग पिछले 75 सालों में मनुष्य ने ये तरक्की करी है कि वो बैलगाड़ी से और घोड़ा गाड़ी से आज नक्षत्र में पहुंच चुका है। ऐसा क्यों हुआ? उसने खुदा पर से अपना विश्वास क्यों हटा लिया, और क्यों अपने काबिलियत से अपनी इंद्रियों पर ज्यादा भरोसा करने लगा है? एक इंसान होने के नाते से उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया? क्यों उसने खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया है और अपने ऊपर भरोसा कर रहा है? जैसे कि उस नास्तिक और धर्म की निंदा करने वाली औरत ने कहा, जो कि वॉशिंगटन में रहती थी, उसका क्या नाम था, मरे, अच्छा, उसने कहा, जब तक हमारे पास आर्मी है, फौज है और नेवी है, हमें पुराने जमाने के यहोवा की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात की कभी चिंता नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। मेरे लिए तो यहोवा ही सब कुछ है। चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, वो सब डूब जाएगी, लेकिन यहोवा हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वो शुरू से था। और जब तक मैं उसका हिस्सा हूँ, तब तक मैं उसका बेटा हूँ, और मैं हमेशा उसका होने के नाते से उसी के साथ रहूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसे पसंद किया गया है या मेरी मुलाकात कैसे हुई है। ये तो उसने मुझे पसंद किया है, मैं उसकी पसंद हूँ। मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं, किसी से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो केवल मेरा ताल्लुक खुदावन से है। आमीन, आमीन। या तो मुझे यहोवा दे दीजिए, या फिर मुझे मौत दे दीजिए। बड़े बड़े देश उठते हैं और गिर जाते हैं, उठे और गिरते रहे, लेकिन यहोवा शुरू से आखिर तक वैसा ही है। जमाने गुजर गए, रोम आया, गिर गया, मिस्र आया, गिर गया, बड़े बड़े देश आए और गिर गए, लेकिन यहोवा आज तक वैसा का वैसा ही पाया जाता है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिक महसूस कर रहा हूँ, हालेलुया। और रूस जो है अपने आपे में आ गया, क्योंकि जरूरी था वो अपने आपे में आए, अपनी जगह पहचाने, जैसे कि इसराइल को जबरदस्ती धक्का दे करके अपने देश में पहुंचा दिया गया। और ऐसा काम खुदा ने ही किया ताकि अपनी तुरहियों को वो पहचान सके, क्योंकि समय आ चुका है। और इसीलिए खुदा ने भी रूस को एक जगह इकट्ठा किया और कम्युनिज्म को वहां पे ऊंचा कर दिया, ताकि इसके द्वारा से जो नबूवत खुदावन ने करी थी उसको पूरा कर सके, अर्थात खुदा की मर्जी को रूस के द्वारा पूरा किया जा सके। मनुष्य जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा से अब तक चलता आया है, घोड़े गाड़ी से लेकर आज तक वो खुदावन खुदा पर विश्वास करता आया है। लेकिन पिछले लगभग 75 सालों में मनुष्य ने खुदा पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जब उन्होंने, अर्थात अमेरिका ने, अपना संविधान बनाया, उसने हर जगह, हर स्थान में खुदा को पहला हिस्सा दिया था। लेकिन अब उन्होंने यहाँ तक कि खुदा के नाम की मीटिंग भी खत्म कर दी है, उसका नाम लेना भी छोड़ दिया है। ये सही बात है, उन्होंने खुदावन पे भरोसा करना छोड़ दिया है, अपनी साइंस पर, अपने विचारों पर और अपने दिमाग की चालाकी पर ही केवल वो भरोसा कर रहे हैं। और ये सब 400 BC और चालाकी का एक झुंड बन गया है। अब क्या हुआ है कि सारा का सारा संसार बाइबल को छोड़कर अपने दिमाग की अज्ञानता में फंस चुका है, और पूरे संसार ने खुदा से अपना नाता तोड़ लिया है और अपना मुंह मोड़ लिया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुदावन ने तमाम कलीसियाई डिनोमिनेशन में से, सेमिनरीज में से, जहाँ पर बुरी बातें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं, अपने लोगों को निकाला है, अपने नबियों के वचन के द्वारा से काट कर और छांट करके अपनी दुल्हन को तैयार किया है जो उस पर विश्वास करती है। जैसा उसने वादा किया था वो वैसा ही करेगा, अर्थात अपने लोगों को छांट कर और काट कर तैयार करेगा। उन्होंने मनुष्य की जो बुद्धि और समझ है उस पर ही भरोसा किया है, और मनुष्य के द्वारा जो साइंस आई गई है उस पर ज्यादा उन्होंने भरोसा किया बजाय खुदा के। और अमेरिका जो है आज खुदा को छोड़कर अलग हट गया है। यहाँ तक कि उन्होंने खुदा को स्कूलों से भी अलग कर दिया है। बच्चे अब खुदा के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि स्कूलों से भी खुदा को और उसके नाम को हटाया जा चुका है। और यहाँ तक कि अब दौलत के ऊपर जो लिखा रहता था कि हम खुदा में विश्वास करते हैं, उस वाक्य को भी हटाया जा रहा है। और उन्होंने तमाम वादों को, जो कि झंडे के नीचे करे जाते थे, कि हम सब खुदा के नीचे एक साथ हैं, इस वाले वाक्य को भी हटा दिया गया है और खुदा से दूर ही रोजाना हटते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य अपनी भावनाओं और अपनी इंद्रियों के द्वारा से खुदावन से दूर हटता चला जा रहा है, और पिछले लगभग 75 सालों में उसने बहुत कुछ तब्दीली आ गई है, अपने दिमाग पे ज्यादा भरोसा करने लगा है और खुदा जिसने उसे क्रिएट करा था उससे दूर हट गया है। और इन अंतिम दिनों में क्या आप पहचान सकते हैं कि हम कहां हैं? सारी कलीसियाएं खुदा से दूर हट चुकी हैं और उन तजुर्बों में जो कि सेमिनरी में पाया जाता है उस पे भरोसा कर रही हैं और वचन को छोड़ती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि वो अपनी मीटिंग में उसको नहीं पहचानते हैं, स्कूल में नहीं पहचानते हैं और उससे कोई ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। लेकिन इसराइल ने पिछले 25 सालों में कुछ पहचान लिया है, वो अपने देश में वापस लौट कर आ गए हैं जैसा कि वादा किया हुआ था। इसराइल लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि किस प्रकार के और वो क्यों यहाँ पर पहुँचा दिए गए। उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं, मौतें सही हैं, जो वो तुरियों के अंदर सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने स्वदेश लौट चुके हैं और उन्हें नहीं मालूम है ये सब क्यों हुआ। रूस क्यों जाग उठा, बाकी देश क्यों जाग उठे और ये सब कारनामे क्यों घट गए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खोज करी, लगभग 300 साल पहले की बात है, एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, उसने कहा यदि 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी चलाई जाए तो उसमें इतनी ज्यादा सामर्थ आ जाएगी कि वो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से छूट करके आसमान में उड़ करके चला जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ियां चल रही हैं और अभी लोगों की कोशिश है इसमें आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो धीरे धीरे पहचानते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कलीसिया में ऐसा हुआ? पहले तो यीशु मसीह अर्थात मजबूत चट्टान पर स्टैंड लेते थे और इस प्रकार से वचन के ऊपर भरोसा रखकर चलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वो अपने रस्म रिवाज में फंसते चले गए। पहले लूथर के जमाने में, वेस्ली के जमाने में और बड़े बड़े प्रचारकों के जमाने में लोगों ने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। लगभग पिछले 25 सालों की यह कहानी है, इसराइली अपने देश में पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस बात की जरूरत महसूस करी है कि खुदावन कुछ चाहता है। जैसी भविष्यवाणी करी गई थी वो लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जैसा होशे ने कहा था वो अपने देश में आ चुके हैं और खुदावन उनको लेकर आया है। अब वो चाहते हैं खुदावन हमारी मदद करे और हम भी चाहते हैं खुदावन हमारी मदद करे। और उसी समय दुल्हन ने भी शाम की रोशनी को पहचान लिया है और उस रोशनी को और पहचानती चली जा रही है। जो पेंटिकॉस्टल भूखे और प्यासे हैं प्रभु के वचन और आत्मा के, उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन जो संस्थाएं हैं उन्हें क्योंकि कोई मतलब नहीं है, उनका कोई इससे तात्पर्य नहीं है, इसलिए वो तो अपने रस्म रिवाजों में फंसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए पहचानने का समय है और आपको कुछ पहचानना अवश्य है। संसार ने कुछ पहचाना है, देशों ने कुछ पहचाना है, विज्ञान ने भी कुछ पहचाना है, शैतान ने भी इस बात को पहचान लिया कि वो समय आ गया है कि वो इंसान को तोड़े और मरोड़े, कलीसियाओं के ऊपर आघात करे, लोगों को मारे, और उसको भी पहचान आ गई है कि ये समय है कुछ कर बैठने का। और ऐसे ही खुदावन ने भी पहचाना है, उसे मालूम है कि वो समय आ गया है कि इस धरती पर पाए जाने वाले उन लोगों को जो पहले के चुने हुए हैं अनंत जीवन दान में दे दे, और वो समय आ गया है, उसने अपना संदेश भेज दिया है। लोग बागों ने भी पहचान लिया है, दुल्हन ने भी पहचान लिया है कि शाम का समय आ गया है और शाम की रोशनी भी आ गई है। यदि सदोम ने भी अपने समय को पहचाना होता जबकि उसके बीच में दूत भेजे गए, जैसे कि बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट, हर एक बड़े ही लंपट किस्म के व्यक्ति ने जो कि फिनिक्स में था, उसने एक बात कही मेरे बारे में, इन टेप को उसने लिया और कहा कि मैंने कहा है, अर्थात भाई ब्रैनम ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी है। और देखिए उसने क्या कहा, मैं एक बार अफ्रीका की तरफ सुना रहा था किस प्रकार से अफ्रीका में लोग बपतिस्मा लेते हैं, तीन बार आगे मुंह झुका करके डुबाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए भाई ब्रैनम ने कहा है चाहे कैसे ही बपतिस्मा दिया जाए, चाहे एक बार डुबा के चाहे तीन बार डुबा कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने उस टेप का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं सुनाया और उसने आगे का टेप बिल्कुल भी नहीं सुनाया। आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि किसी प्रकार के टेप को तोड़ मरोड़ करके दूसरे के नाम का करके बताना, क्योंकि इस पे स्वाधिकार सुरक्षित है और कोई उनकी मिलावट नहीं कर सकता। आप जानते हैं आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें तो ये बेहतर होगा। लेकिन हम क्या हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा उस भाई को छोड़ दो, अर्थात ब्रदर ब्रैनम को छोड़ दो, क्योंकि खुदावन ने बताया है कि जैसा जो कर रहा है वैसा ही उसके साथ होगा। और उसी समय दुल्हन ने भी अपने समय को अर्थात चांद की रोशनी को पहचान लिया। यदि सदोम ने अपने समय को पहचाना होता, अब देखिए इसी व्यक्ति ने टेप पर क्या कहा कि यहाँ देखिए पेंटिकॉस्टल और बैप्टिस्ट भाइयों, ये झूठा नबी जिसका नाम विलियम मेरियन ब्रैनम है, उसने क्या कहा कि ओरल रॉबर्ट और बिली ग्राहम सदोम गए थे। देखिए उसने आगे का टेप तो काट दिया और चलाया ही नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था ये सदोम के लिए मैसेंजर है। ये नहीं कहा मैंने कि वो सदोम में गए, वो तो सदोम के लिए संदेश वाहक है, ऐसा जरूर कहा था। और इसको आप अपने टेप पर चलाकर देख सकते हैं। जो कोई भी एक शब्द घटाएगा एक शब्द बढ़ाएगा जैसे प्रभु का वचन कहता है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा यदि सदोम ने अपने दिल को पहचाना होता तो आज ही वो वैसा का वैसा ही खड़ा पाया जाता। जैसे इब्राहिम ने पहचान लिया, अगर ऐसे सदोम वाले पहचान जाते, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि वादा किया हुआ बेटा आने वाला है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उससे पहले जिस्म में तब्दीली आना आवश्यक है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी सारा भी बहुत बूढ़ी थी। लेकिन जब इब्राहिम ने देखा तो उसने पहचान लिया, क्योंकि खुदा ने सारा के दिल के भेद बता दिए थे। और जब इब्राहिम को पता पड़ गया कि वो समय आ गया है, उसने कहा हे मेरे प्रभु थोड़ा सा इंतजार कीजिए ताकि मैं आपके पैर धोऊं, आपकी सेवा करूं और आपके लिए भोजन लाऊं। उन्होंने इब्राहिम के यहाँ जाकर खाना खाया, रोटी खाई और इब्राहिम कहता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ थोड़ी देर के लिए और आप लोग यहाँ पर रुक जाइए। आए मेरे खुदा, उसने जैसे अंग्रेजी में कैपिटल LORD कहा जाता है, कहा लॉर्ड अर्थात इलोहिम। इब्राहिम ने उसे पहचान लिया कि खुदा यहाँ इंसानी जामे में होता हुआ उससे बातचीत कर रहा है। इब्राहिम ने अपने समय को पहचान लिया, चिन्ह को पहचान लिया, इसलिए उसको प्रभु की ओर से आशीष मिली। सदोम ने नहीं पहचाना अपने दिन को, इसीलिए वो जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। यीशु मसीह ने कहा जैसा कि उन दिनों में हुआ था वैसा ही अंतिम दिनों में भी होगा, अर्थात जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा तो वैसे ही दिन होंगे जैसे कि सदोम का समय था। इसराइल जो है उसने अपने समय को नहीं पहचाना, और जिस प्रकार से कलीसिया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में ढकेल दी गई है, वैसे ही इसराइल को वापस फिलिस्तीन देश में ढकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने समय को नहीं पहचाना। आए मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ और उसके गुनाहों में किसी प्रकार से शामिल ना हो। इन डिनोमिनेशन से बाहर आ जाओ और अपना जीवन बचाओ, नहीं तो तुम भी उस पशु के चिन्ह के द्वारा मार कर दिए जाओगे और आगे फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकेगा। जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही बना रहे, और जो पवित्र है ये नहीं कहा गया कि जो पवित्र होगा, बल्कि अब जो पवित्र है उसकी बात हो रही है। उनके समान नहीं जिन्होंने बाल कटा रखे हैं, या अपने औरतों की तरह जिन्होंने अपने बाल कटाए हुए हैं और वजन को छोड़कर प्रभु के इधर उधर की बातों पर विश्वास करते हैं। बाल कटाना बहुत बड़ी बेइज्जती का काम है, जैसे वचन हमको बताता है कि वो अपने पति का तिरस्कार करती है और उसकी बेइज्जती करती है इस बाल के कटाने के द्वारा से। उसका सिर मसीह है, और जो मसीह का इनकार और तिरस्कार करता है वो कैसे अशुद्ध न होगा? वो बिल्कुल अशुद्ध है, और इसलिए यदि उसने बाल कटाए हैं अब बाल ही कटा के रहे, यदि वो निकर पहनती है निकर ही पहनती रहे, और जो प्रभु के वचन का इंकार करता है अब वो इंकार ही करता रहे। लेकिन जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो शुद्ध है वो शुद्ध बना रहे। प्रभु का वचन शुद्ध है और प्रभु भी वो पवित्र है जो कि खुदा का पुत्र है और जहूर में आ चुका है। जो अच्छा है वो अच्छा ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। इस बात को पहचानिए, इसको पहचानने का समय आ गया है महाशय। कलीसिया ने अपने दिन को नहीं पहचाना है, जैसे इसराइल के लिए वायदा किया गया था। इसराइल को भी कुछ पता नहीं पड़ा कि वो कैसे अपने देश में पहुंचा दिए गए, बस पहुंचा ही दिए गए। और मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, राष्ट्रों की सामर्थ्य ने मिल करके इसराइल को उसके देश में पहुंचा दिया, और उसी प्रकार के देशों की शक्ति मिल करके कलीसिया को वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में पहुंचा देगी। लेकिन खुदावन की सामर्थ अपने लोगों को दुल्हन के अंदर शामिल कर देगी। संसार की सामर्थ्य इधर पहुंचाती है उधर पहुंचाती है, लेकिन खुदा की सामर्थ ऊपर पहुंचाती है। खुदा का आत्मा जो कि उसका पवित्र वचन है, यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। इसीलिए खुदावन का आत्मा दुल्हन को उसके स्थान में पहुंचा देगा, क्योंकि दुल्हन ने अपने समय के संदेश को और प्रभु के वचन को पहचान लिया है। लेकिन मसीह ने अपनी दुल्हन को अपने स्थान में पहुंचा दिया है। कोई भी राष्ट्रीय सामर्थ दुल्हन को इधर उधर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन राष्ट्रीय सामर्थ्य ने इसराइल को जरूर अपने देश में पहुंचा दिया है, और उसी प्रकार से सामर्थ्य वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में सभी संस्थाओं को एकत्रित कर देंगी। लेकिन खुदावन की सामर्थ्य अपनी दुल्हन को बड़ी ज्योति में और बड़ी महिमा में ऊपर उठा देगी। आपने देखा, हाय मेरे लोगों, अपने चिन्ह को पहचान लो। जैसा यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी, सदोम के चिन्ह का इशारा दिया, कलीसिया की हालत क्या होगी इस जमाने में प्रभु ने पहले ही बता दिया है। देखिए खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा इस जमाने के लिए, इसको गौर से पहचानने की कोशिश करिए कि सदोम का जो चिन्ह है वो इन अंतिम दिनों में दोबारा से दिखाया जाएगा। जैसे कि इब्राहिम को चिन्ह दिया गया था अर्थात सदोम में जाने से पहले, क्योंकि इब्राहिम सदोम से बाहर पाया जाता था, इन बातों के लिए भविष्यवाणी करी गई थी ये दोबारा से घटनाएं घटेंगी। अब आप देखिए आप कौन से समय में रह रहे हैं जिसको हमने बार बार देखा और समझा है। ना जैसे उसने वायदा किया था कि स्वर्गीय रोशनी के द्वारा वो बीज जो कि वचन रूपी बीज है उसको पकाया जाएगा, आज वो बीज आपके बीच में बोया जा चुका है। अब यहाँ पर बीज है जो कि प्रभु के वचन अर्थात बाइबल के रूप में बोया गया है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वचन ही वो बीज है जिसको बोने वाले ने बोया, और अब यदि आप किसी भी प्रकार की फसल क्यों ना काटना चाहें, जो बीज बोया गया है वही फल लेकर के आएगा, और उस फल को पकाने के लिए जरूरी है रोशनी पड़े ताकि बीज फड़ ना जाए बल्कि अच्छा फल लेकर के आए। यदि रोशनी नहीं पड़ी तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि अच्छी जमीन में अच्छा बीज बोया गया है तो उसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी सूरज की तो वो पकेगा, जैसे कि वायदा किया गया है अंतिम दिनों के लिए शाम के समय एक रोशनी आएगी, और जो पुत्र की रोशनी है खुदा के बेटे की जो रोशनी है उसके बीज जो कि वचन रूपी बीज है ये जरूर पकेगा। बीज बोया जा चुका है अर्थात प्रचार किया जा चुका है, और खुदा का बेटा जो है इस बीज को पका रहा है, आपके सामने सिद्ध करके दिखा रहा है और कोशिश कर रहा है इसके सामने आप लोगों की निगाहों के सामने उस बीज को ऊपर लेकर आ जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप अपने दिल को पहचान पा रहे हैं। मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि समय आ चुका है कि मैं अपनी बात को अब खत्म करूँ। और अब अमीर अंधे पढ़े लिखे लौदीकियाई जमाने के लोग प्रभु के वचन को अपने बीज में से हटा देंगे, क्या उन्होंने ऐसा किया है? हाँ, लिखा है वो ऐसा ही करेंगे। और जैसा पुराने जमाने के नबियों के बारे में लिखा हुआ था वो उस अपने जमाने के वचन को लेकर गए, और जिन लोगों के लिए पहले से निश्चित था उन्होंने अपने समय के संदेश को सुना और जान लिया, जैसे कि उस कुएं पर पाई जाने वाली औरत ने, नातान ने, अंधे बरतिमास ने, पतरस ने और बाकी लोगों ने भी अपने समय के संदेश को पहचान लिया, और वो स्वयं ही वचन था। और जैसे उसने कहा यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं जैसा कि वादा किया गया है तो मेरा विश्वास यकीनन तुम ना करना, लेकिन यदि मैं वो काम करता हूं जिनका वादा किया गया था तो मेरा नहीं बल्कि उन कामों का देखकर तो विश्वास करो और जान लो कि मैं कौन हूं। क्या तुम्हारी समझ में आया? और आप अपने समय को बिल्कुल से छोड़ ना दे। आए भाई और बहनों, जिन्होंने अपने समय को पहचान लिया वो बच गए और सुरक्षित रहे। आए मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, अपने दिन को पहचान लो, शाम के समय को पहचान लो, क्योंकि अब वो समय आपके सामने मौजूद है जो कि यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, उसने अप्रमाणित करके दिखा दिया है। हम लोग बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं, अपने दिन को जरूर से पहचान लो। मैं जानता हूँ मैंने आपका काफी समय लिया है, ये लगभग करीब 12 बज चुका है, लेकिन ये भोजन मेरे को पसंद है क्योंकि इसमें जीवन है और ये केवल विश्वासियों के लिए है। और मैं आपसे कहता हूँ अपने दिन को जिसमें आप जीवित हैं पहचान लीजिए और समय के चिन्ह को भी पहचान लीजिए। अब देखिए आप प्रत्येक चीज को की कहाँ पाई जा रही है, इसराइल को देखिए, कलीसिया को देखिए, और तमाम अश्लीलता को जो चारों ओर पाई जाती है उसे देखिए, और दुल्हन को देखिए वो कहाँ खड़ी है। अब बचा ही क्या है? अगली चीज केवल ये बची है कि दुल्हन यहाँ से आसमान पर उठा ली जाए। कारण क्या है? कलीसिया इधर उधर निगाह उठा रही है, पेंटिकॉस्टल लोग कह रहे हैं प्रभु की तारीफ को, प्रभु का धन्यवाद हो, ये काम करना है हमको, वो काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो लोग तो केवल प्रचार करने वाले हैं, तो अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। वो इस बात पर विश्वास करते हैं जैसे कि एक समय कैफा नाम के व्यक्ति ने कहा कि हमारे लिए उचित है कि एक मनुष्य हमारे बीच में से मरे ताकि सारा का सारा राष्ट्र बर्बाद न हो जाए। वो अपने समय का महायाजक था जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, और इसी वजह से उसने याजक होने के नाते से भविष्यवाणी करी थी, और वो नहीं जानता था कि वो कह क्या रहा है। लेकिन आपको क्या मालूम है, उसने कभी इस सत्य का थोड़ा सा भी एहसास किया कि जिस खुदा का वो इंतजार कर रहे थे और जिसके याजक होने का वो बयान कर रहे थे उसी का उसने कत्ल कर दिया। वैसा ही आज भी हो रहा है, लोग बाग इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एक बार मैं बिजनेसमैन की कन्वेंशन में गया और वहाँ पर वो लोग क्या बोलते हैं, खुदावन की तारीफ उसका धन्यवाद हो, एक प्रचारक ने खड़े होकर के कहा कि एक बहुत जबरदस्त समय आ रहा है, बिल्कुल अंतिम समय में हम लोग पहुंच चुके हैं, खुदावन इस धरती पर आने वाला है, और लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक मारे मारे फिर रहे हैं और इस बात का आभास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये तो तुरियों का समय है इसराइल के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी एक वजह है क्योंकि वो तो केवल प्रचार करने वाले हैं, आत्मा का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि कैफा ने यीशु मसीह के जमाने में एहसास नहीं किया था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो उस संदेश को जो कि इस जमाने के लिए भेजा गया है उसी संदेश का इनकार कर दिया। हर एक वचन का हिस्सा जिसको हमने पिछले दिनों में सुना है, पिछले हफ्तों में सुना है, इस सत्य के बारे में कोई भी बहस और शक करने की जरा सी भी गुंजाइश बाकी नहीं है। यदि एक अंधा इस बात को प्राप्त न कर सके तो यीशु मसीह ने कहा उसको छोड़ दो, अकेला ही रहने दो, यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ऐसा कब होगा मैं नहीं जानता, कहां होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा समय आ रहा है। आप जानते हैं कि कल शैतान ने मुझको कितना परेशान करने की कोशिश करी, मुझे बीमार कर दिया ताकि मैं किसी प्रकार से खुदावन का वचन ना ला सकूं। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से कल मैंने बहुत सारी कोशिश करी, हालांकि मैंने कल जो खा लिया था उसकी वजह से मेरे पेट में काफी तकलीफ रही और परेशानी रही, और मैं सोचता रहा बीमारी के उस हाल में भी कि प्रभु मैं चाहता हूँ तू मुझसे बातचीत कर, मुझे कोई संदेश दे ताकि मैं लोगों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कहूं। मैं बैठा रहा, वचन को पढ़ता रहा, अपने दिमाग पे जोर देता रहा कि कोई तो मेरे को वचन, कोई तो संदेश मिल जाए, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब संदेश मुझे मिलना शुरू हो गया तो शैतान मुझसे बार बार ये कहता रहा, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारा सिर चकरा रहा है, तुम बीमार हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम खड़ों के प्रचार नहीं कर सकते, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। मेरे को एक समय की एक कहानी याद है, एक छोटे से साधारण से आदमी की जो कि इंग्लैंड का था, वो एक साधारण सा व्यक्ति था और उससे राजा की मुलाकात हुई। आप जानते हैं पुराने जमाने में किस प्रकार से बादशाह हुआ करते थे, अपने महलों में रहते थे। और इस राजा ने क्या किया, उसके पास एक मैसेज था, उसे संदेश आगे भिजवाना था दुश्मनों के कारण से, और चूंकि वो बहुत ही अर्जेंट था इसलिए किससे खबर जाए, इसी सीधे साधारण से मनुष्य को उसने पकड़ा और कहा इस संदेश को जल्दी ले जाकर फलानी फलानी जगह पर पहुंचा दो, क्योंकि ये मेरा हुक्म है, इसको जल्दी ही पूरा हो जाना चाहिए। और राजा ने उसे जवान से कहा मैं तुम्हें राजदंड दे रहा हूं, इसको लेकर के तुम आगे चले जाओ, क्योंकि इससे यह बात प्रमाणित हो जाएगी ये मेरे द्वारा भेजा गया संदेश तुम लेकर के आए हो। और उस संदेश को अपने साथ लेकर के चला, उस राजदंड को अपने साथ लेकर के चला, जब चौकीदारों उसको रोकने की कोशिश करी, हर किसी ने उसको पुकारा तो वो शोर से चिल्लाकर आगे बढ़ता गया, हट जाओ मेरे रास्ते में से, हट जाओ, क्योंकि मैं बादशाह का संदेश लेकर के आया हूँ और इस संदेश को मुझे जरूरी लेकर के जाना है, इसमें बादशाह का मैसेज छुपा हुआ है। आमीन। मैंने सोचा शैतान मेरे रास्ते में से दूर हो जा, क्योंकि मेरे पास राजाओं के राजा का संदेश है और मुझे आगे जाना ही है। एक समय ऐसा हुआ जब उन्होंने यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है उसको मारकर कबर के अंदर भर दिया और उस कबर के ऊपर मोहर लगा दी और मृत्यु ने 3 दिन और 3 रात उसको अंदर बंद रखा। लेकिन ईस्टर की सुबह उसने कहा मेरे पास राजदंड है और जोर से चिल्लाया मौत मेरे सामने से दूर हो जा, ये कबर मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मेरे पास राजा के राजा का संदेश है, मुझे बाहर जाना है और इस पुनरुत्थान का प्रचार करना है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, मैं अपने अंदर बहुत ही आत्मिकता महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास राजा का संदेश है। आइए भाइयों और बहनों इसको पहचान लीजिए कि हम सबको एक साथ इकट्ठा किया गया है, हम सबको एक साथ बुलाया गया है इस तुरी की आवाज के द्वारा से, क्योंकि प्रभु की तुरी फूकी जाएगी और उसके बाद फिर कोई समय नहीं बचेगा। उसने इस्राएल को एकत्रित कर लिया है, जैसा लिखा हुआ था 30वें दिन वो हमें जिला उठाकर खड़ा कर देगा। 2700 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं और 30वां दिन चल रहा है, जैसे उसने वायदा किया था वैसे ही उसने कर दिया है। और जैसा कि उसने कहा था जीवन का मार्ग उनको बताया जाएगा, आप देख रहे हैं दुल्हन इस बात का इंतजार कर रही है कि रास्ते से हटाई जाए ताकि वो नबी जो कि इब्रानी नबी है वो आ जाए और अपना कार्य करें। आपको ध्यान है एक बार मैं कैरो में था और वहां पर खड़े हुए लिवाई पत्रोस ने मुझसे कहा यदि आप इस्राएल में जाएं तो वो चूंकि नबियों का विश्वास करते हैं वो आपको पहचान जाएंगे और खुदा के मैसेज को भी पहचान जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा का अनुग्रह आप देखिए कैसी, मैंने कहा कि वो नए नियम पढ़ लेंगे और उन्होंने पढ़ लिया है। लिवाई पत्रोस ने कम से कम 10 लाख के करीब नए नियम की पुस्तकें जो कि स्वीडन से हैं भाई इसराइल देश में पहुंचा दी और उन्होंने कहा यहूदी लोग आज की तरह के लोगों की तरह नहीं है, वो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं। और उन्होंने कहा यदि हमारे बीच में मसीह का चिन्ह प्रकट करके दिखाया जाएगा जो कि नबियों के द्वारा होता है हम अवश्य विश्वास करेंगे। लिवाई पत्रोस ने कहा भाई ब्रैनम ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। और किसी ने मुझसे कहा ये बहुत अच्छा ही मौका है, जब हम जा रहे थे तो मुझसे कहा गया कि भाई अर्जन राइट ने कहा भाई ब्रैनम यदि आप ऐसा काम करेंगे नबी का चिन्ह के बीच में दिखाई देंगे बहुत जबरदस्त बेदारी वहां पर आ जाएगी और वो सब विश्वास कर लेंगे। और मैंने कहा खुदावन मेरी मदद करे मैं तैयार हूँ। मैं हवाई जहाज पर चढ़ गया, मैंने अपने साथ पैसा लिया, टिकट लिया और कैरो तक मैं पहुंच गया और मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ और जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये तुम्हारा समय नहीं है, अरे तुम्हारा समय भी नहीं है, तुम्हारी जगह भी नहीं है, तुम तो अपने प्रोग्राम से भी आगे चले गए। मैंने सोचा अरे मैं तो यहाँ तक आ पहुंचा हूँ और अब तो मुझे आगे ही जाना है। किसी ने मुझसे कहा यहीं पर रुक जाओ और आगे मत बढ़ो बल्कि हिंदुस्तान चले जाओ, तुम वहां मत जाओ अर्थात इसराइल मत जाओ लेकिन हिंदुस्तान चले जाओ। और मैं रुक गया, मैंने कहा प्रभु ये क्या चक्कर है, और जहाँ हवाई जहाज खड़े किए जाते मैं हैंगर में चला गया और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ये क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और तब उसने मुझको समझा दिया कि कोई भी अन्य जाति इसराइल में नहीं जाएगा, केवल वो दो नबी जिनका वचन में लिखा हुआ है वैसे ही वचन का पालन करते हुए इसराइल में पहुंचेंगे और उनमें से एलिया और मूसा को वहां जाना है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि दुल्हन अभी तक इस दुनिया में पाई जाती है और वो रास्ते से हटा करके स्वर्ग पर नहीं पहुंचाई गई है। और तब वो नबी वहां पर आ जाएंगे और जब नबी पहुंचेंगे तो नबियों का चिन्ह दिखाया जाएगा और वचन इस प्रकार से पूरा होगा और सारा का सारा वचन एक लाइन में फिरते हुए इसराइल एक ही दिन में पैदा हो जाएगा। और जैसे कि शाम को रोशनी होती है सांझ के समय उजियाला होगा और महिमा का रास्ता तुमको यकीनन मिल जाएगा। और पानी के रास्ते में ही आज रोशनी और जीवन पाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के मुबारक नाम में गाड़ा जाना है। चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, अपने गुनाहों से तौबा करो और वास्तव में पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। शाम की रोशनी आ चुकी है और यह सत्य बातें हैं, खुदा और मसीह एक हैं। हम लोग अंतिम दिनों में हैं दोस्तों, और मैं सोचता हूँ कि ये गाना बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और जैसे कहा गया है, नेशंस आर ब्रेकिंग, अर्थात देश टूटते जा रहे हैं। इस बात को हुए लगभग 15 साल गुजर चुके हैं। इसराइल जाग चुका है और चिन्ह जो कि नबियों के द्वारा बताए गए और अन्य जातियों के दिन कम किए गए हैं, सरकंदियों अपने चारों ओर देखिए, इस प्रकार से जी काटने को और दिल दहला लेने को चारों ओर समा बसता चला जा रहा है। और आए छिटरा दिए गए लोग, वापिस अपने के पास आ जाओ, छुटकारे का दिन करीब आ चुका है। डर के मारे लोगों का जी घबराता जा रहा है। खुदावंत की आत्मा से भर जाओ और अपनी अपनी बच्चियों को सुधार लो और साफ कर लो। ऊपर देखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा पास आ चुका है। ये सही बात है। झूठे नबी झूठ बोल रहे हैं और खुदावंत के सत्य का इनकार कर रहे हैं। और क्या ये सत्य बात नहीं है? यीशु जो मसीह है वो हमारा खुदा है। वो इस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो इस इधर और उधर पाए जाने वाले बहुत सारे वादों पे विश्वास करते हैं। जैसा कि नबी ने कहा है बड़ी प्रेरणा में होते हुए कि हम जो प्रेरितों का और जो रसूलों का रास्ता है उसी के ऊपर चलेंगे। याद रखिए मेरे दर्शन की बात को, जैसा कि मैंने कहा था उसमें, और उसने जो कुछ भी प्रचार किया और जहाँ पर उसके लोग गए हैं, मैंने भी बिल्कुल वही प्रचार किया है और मेरे लोग भी वहीं जाएंगे और मैं इस बात पर टिका हुआ हूँ। और तब लाखों की भीड़ ने एक साथ अपने हाथ उठाकर जोर से कहा, हम उसी पर आज तक टिके हुए हैं। क्या है, आपने पहचाना कि हम कौन से दिन में हैं और हम कौन से जमाने में रह रहे हैं? क्या आपने चिन्ह को पहचाना है जिसमें हम लोग हैं? बेहतर होगा आज आप सोच लें, वरना बात हाथ से जा चुकी होगी। क्योंकि आज किसी एक दिन ऐसा होने वाला है, जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा और जो अंदर है वो हमेशा के लिए अंदर हो जाएगा, क्योंकि दरवाजा बंद होने वाला है। लेकिन आज सुबह के समय यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया है, यीशु मसीह के नाम में मैं तुमसे कहता हूँ, आए मेरे अजीज भाई और बहनों, इस अनपढ़ और अज्ञानी प्रभु के दास की ओर निगाह ना करिए जो आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं तो अनपढ़ हूँ, कोई मेरी शिक्षा अपनी नहीं है, लेकिन जो वचन आपके सामने प्रचार किया गया है, जो सिद्ध करके दिखाया गया है, उसकी ओर निगाह कीजिए, उस महान पवित्र आत्मा की ओर निगाह कीजिए जिसने इस सत्य को प्रमाणित करके दिखा दिया है। भाइयों, हम शाम के समय में हैं और जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस समय आपके हाथों से निकल जाए। आई और तो मेरी बहनों, अपने बाल बढ़ने दीजिए, मेहरबानी से उन गंदे गंदे वस्त्रों को अपने घर से निकालकर फेंक दीजिए, उन सिगरेट के डिब्बों को फेंक दीजिए, क्योंकि वो समय आ गया है जबकि जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही बना रहेगा, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहेगा, और जो अंदर है वो अंदर ही बना रहेगा, जो बाहर छूट जाएगा वो बाहर ही रह जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा समय हमको दिया गया है, जब धर्मी लोग ही बड़ी मुश्किल से बचेंगे तो गुनहगारों का क्या होगा, जो कि खुदा पर भरोसा नहीं करते, जो सत्य का इनकार करते हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे, उनका क्या होगा? आइए हम अपने सर झुकाएं और प्रार्थना करें। और अब इस समय की रोशनी में जहाँ हम जीवित हैं, उस रोशनी में दिन की जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अपने प्यारे और खूबसूरत और कीमती नाम में, आप लोग जो देशों के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, मैं भी आपके साथ मिलकर इस वेदी के सामने, आइए अपने हृदय की खोज करें और इसमें अंदर झांक करके देखें कि किस प्रकार से खुदावन के आत्मा ने हमसे बातचीत करी है। याद रखिएगा, ये वो आत्मा है जो कभी दोषी नहीं ठहराया गया। हर एक कलीसियाई शिक्षा, हर एक सिद्धांत जो कि गलत और इधर उधर जा रहा है, भला होगा आप उससे दूर रहें। आप इस वचन में ना तो मिला है कुछ और ना इसमें जोड़ें और ना इसमें से कुछ निकालें, क्योंकि यदि आप कोशिश करेंगे कि अपने खुलासे को इसमें लगा दें तो आप अपने उस हिस्से को जो कि जीवन की पुस्तक में पाया जाता है उसमें से भी निकलवा देंगे। क्या आप कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी बात कहने की जो कि आत्मा ने ना कही हो, या कुछ आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे मेल ना खाती हो, या फिर आप इस वचन को ऐसा ही रहने दें जैसा कि ये पाया जाता है? क्या आप टेपों की आवाज को मिला रहे हैं, या इसमें से कुछ काट कर रहे हैं, या कुछ अपने ही टेपिंग कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है? आप कहते हैं कि जैसा मुझे होना चाहिए मैं महसूस कर रहा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, या फिर मेरी कलीसिया कुछ और बात में विश्वास करती है, लेकिन एक इंसान का ऐसा वचन है और वो मनुष्य खुदा खुद है। और बाइबल हमको बताती है कि औरतों को अपने बाल नहीं काटना चाहिए, और जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा औरतें आदमियों के कपड़े पहनने लगेंगी और वो कोशिश करेंगी आदमी बनने की, और ये खुदा की निगाहों में बहुत ही घृणित बात जानी जाएगी। और किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने इस नाजुक से, इस छोटे से, इस नम्र से, रात में होकर के बातचीत करी है और इस बात को समझाया है किस प्रकार से उस महान राजा ने एक छोटे से व्यक्ति को अपना राजदंड देकर के कहा इस राजदंड को लेकर के चले जाओ, इसके साथ ही मेरा संदेश ले जाओ। मैं जानता हूँ कि डिनोमिनेशन ने इस संदेश को रोकने की पूरी कोशिश करी है, इधर से उधर मोड़ा है, इधर से उधर उसको फेंक और छितराया है, लेकिन खुदा की मेहरबानी से मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं एक देश से दूसरे चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा हूँ, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हूँ, एक कलीसिया से दूसरे स्थान जा रहा हूँ और ये बोला बाहर निकल आओ, क्योंकि संदेश हर किसी के लिए नहीं है लेकिन फिर भी सत्य है और हर किसी को ये माफिक भी नहीं आता। क्या आप उस आत्मा में होते हुए संदेश को ग्रहण करेंगे जिसने लिखा है? क्या आप उस आत्मा में होते हुए इसको कबूल करेंगे जिसने संदेश आप तक पहुंचाया है? यदि अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो हमारे पास कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर वेदी हो, आपका हृदय ही खुदावन के सामने वेदी है। आप क्या मेहरबानी से अपना हाथ उठाएंगे और कहेंगे खुदावन तू मुझ पर मेहरबानी कर, खुदावन का आत्मा मेरे अंदर आ जाए जो मुझे दोषी ठहरा रहा है उन तमाम गुनाहों के लिए जो कि मैंने किए हैं, बुरी आदतों के लिए, गुस्से के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए और उछलेपन के लिए, खोदेपन के लिए और तमाम बुराइयों के लिए जो मेरे अंदर पाई जाती हैं। और मैं जानता हूँ खुदावन अपने आत्मा के द्वारा तू मुझे नम्र बना दे, मुझे हलीम बना दे ताकि प्रभु मैं इस घड़ी और ज्यादा नम्र बन सकूँ। जो संदेश मैंने तेरा आज सुना है उसके द्वारा से मुझको आशीषित किया है। हो सकता है कि मेरे जीवन का ये आखिरी संदेश हो। मैं अपने हाथ उठाता हूँ, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ मेहरबानी से मुझ पर करुणा और दया कर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। दर्जनों की तादाद में हाथ उठे हुए हैं और थोड़ी देर के लिए हम खामोशी के साथ प्रार्थना करेंगे। और आप सब जिन्होंने हाथ उठाए हैं इस बात का इशारा किया है कि आप इस बात को चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करी जाए, जरा मेरी ओर देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु का आत्मा किसी को अब भी बुला रहा है। प्यारे खुदावन, तू सभी बातों को जानता है और तूने सभी चीजें किसी न किसी मकसद से तैयार करी हैं। किसी को दोषी ठहराया है, किसी को अंधा ठहराया है, जिस प्रकार से तेरा वचन बताता है पौल उसके माध्यम से, कुछ बर्तन इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनका आदर मान हो और कुछ बर्तन इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनका निरादर हो, और जिसने उनको बनाया है इसलिए बनाया है ताकि उनका निरादर हो। निरादर होने से ये तात्पर्य है ताकि जिनका आदर हो वो भी प्रकट हो जाए। लेकिन क्या ये कुम्हार के हाथ में नहीं है कि वो किस मिट्टी से क्या बनाए? क्या ये खुदावन के हाथ में नहीं है जिसने अपने भविष्य ज्ञान से पहले से जान लिया कि वो किसको बुलाए? क्योंकि उसने तो पहले से ही जान लिया है कि मैं किसको बुलाऊंगा। जिसको उन्होंने बुलाया है उनको खुदा ने धर्मी भी ठहराया है, और जिनको खुदा ने धर्मी ठहराया है उन्हीं को केवल खुदा ने महिमा भी दी है। और हो सकता है उस स्त्री के समान आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हों, जिस प्रकार से वो स्त्री यीशु मसीह से कुएं पर मिली, जो कि अपनी गंदगी में पाई जाती थी, अविश्वास में पाई जाती थी, मनुष्य के द्वारा बनाए गए रस्म रिवाज में पाई जाती थी और इंसानी शिक्षाओं में फंसी हुई थी। हो सकता है किसी ने यह संदेश को आज पहली बार सुना हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल से आत्मा ने बड़ी अजीब और गरीब तरीके से बातचीत करी और चेतावनी दी हो, क्योंकि बहुत सारे हाथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभु। और सबसे महान कुम्हार जो है वो अपने हाथों में इन बर्तनों को ले ले ताकि इनको इस तरह के बर्तन बना दे। मैं विश्वास करता हूँ कोई ना कोई तो कारण है प्रभु, वो नहीं चाहते थे ऐसा करना, नहीं चाहते थे ऐसा कहना, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उनके लिए जिम्मेदार हूँ और मैं उनको तेरे सामने ला रहा हूँ। और खुदावन, तेरा हलीम और छोटा सा दास जो कि प्रभु उनके लिए विनती कर रहा है, जीवित और मुर्दों के बीच में जैसे एक दिन खड़ा हुआ था, जैसे कि एक सदोम और बाकी लोगों के बीच में विनती करने को खड़ा हुआ था कि इसमें से बाहर निकल आओ, सदोम में से जल्दी बाहर निकल आओ। और प्रभु यीशु मसीह, बड़ी मेहरबानी में होते हुए, नम्रता और दीनता में होते हुए मैं तेरे सिंहासन के सामने आया हूँ, अपना दिल तेरे सामने लेकर के आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं वादा करता हूँ कि तू मेरा प्रभु रहेगा। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि आज जब इस स्थान पर जहाँ मैं उपस्थित हुआ तेरे आत्मा ने मुझसे बातचीत करी, मेरे हृदय को तेरे आत्मा ने छेद दिया, और खुदावन मैं कहता हूँ कि आज से आगे को मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा लेकिन तेरी मर्जी के अनुसार ही चलूंगा। और अभी इसी जगह पर, इसी स्थान पर मैं ठीक होना चाहता हूँ, चाहे वो दूसरी सीट हो, तीसरी सीट हो, पांचवी सीट हो, जहाँ कहीं भी, क्योंकि प्रभु इस स्थान पर तूने मेरे को दोषी ठहराया, मेरे गुनाहों को तूने मेरे सामने उजागर किया है, और मैं चाहता हूँ इसी जगह पर तू मुझको दुरुस्त और ठीक कर दे। और ये वो जगह है खुदावन जहाँ तूने मुझसे वादा किया है, चाहे मैं कितना ही गुनहगार और गंदा अशुद्ध क्यों ना पाया जाऊं, लेकिन तेरा वचन कहता है मैं हिम के समान उसको श्वेत कर दूंगा। मैं सारे दिल से तेरे वचन पर विश्वास करता हूं और मैं तैयार हूं प्रभु, विश्वास कर रहा हूं इसको कबूल करने के लिए। और अब मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जीवन कुछ भी अच्छा नहीं था, मेरे पड़ोसियों के लिए अच्छा नहीं था, तेरे लिए भी अच्छा नहीं था, किसी भी अच्छाई के लिए नहीं था, मेरा जीवन तो केवल शैतान के लिए अच्छा था, ताकि मुझे कठपुतली बनाकर नचाए और अपनी मर्जी वो पूरी करता रहे। और शैतान मुझे इधर उधर घुमाता फिराता रहा। किसी इंसान के लिए तो उसने मुझे खड़ा किया कि वो मुझे देखे, किसी स्त्री के लिए हो सकता उसने मुझे अच्छी इमेज बना दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा दास जो तेरे सामने है उससे प्रार्थना कर रहा है, मैं अपने आप को अपने नजीजों को तेरे सुपुर्द करता हूँ और ये छोटी सी प्रार्थना तेरे बेटे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाए हुए और अपने दिलों को झुकाए हुए
I can't. What's it? What's calling you if your Savior is? The Word. You're calling. What must you do to deny the world and take the cross and follow? I've neglected baptism in Jesus' name, Lord. I'll go.
मैं कहाँ तक ठीक हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? क्या मेरा विवेक शुद्ध है? क्या उसका वचन सत्य है? आप एक न्याय के स्थान पर खड़े हुए हैं। मैंने जो कुछ विश्वास किया है वो सही है, क्योंकि प्रभु का वचन सदैव सत्य है। क्या मैं सोचता रहा हूँ कि मैं छोटे बाल रखूँ, छोटे छोटे निकर पहनूं? मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वो डिनोमिनेशन में था। लेकिन उसका वचन क्या कह रहा है? मैंने भी अपने हाथ प्रभु पर उठा रखे हैं और जहाँ तू मेरी अगुवाई करेगा मैं वहाँ चलूंगा। अगला संदेश मुझे कहाँ प्रचार करना है? क्या यहीं पर आज रात को प्रचार करना है, या अफ्रीका में, या जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में? कहाँ प्रभु? अपने सिरों को झुकाए हुए क्या आप उसके पीछे चलेंगे जहाँ वो आपकी अगुवाई करेगा? क्या आप फिर भी उसके साथ चलेंगे जबकि आपके बुरे दिन चल रहे हों, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, लोग आपको सताएं, आपके खिलाफत में बोलें, या फिर भी आप उसके साथ बने रहेंगे और चलते रहेंगे? मैं फिर भी प्रभु तेरे साथ चलता रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा प्रभु, जहाँ कहीं तू मेरी अगुवाई करेगा मैं तेरे साथ स्टैंड लूंगा, मैं तेरे साथ वचन में सत्यता में स्थिरता के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे जब लड़ाई आए मैं वहाँ पर भी लड़ूंगा, क्योंकि सत्य तेरे साथ है और मैं सत्य में बना रहूंगा। जब मैं गिर भी जाऊंगा मैं जानता हूँ प्रभु तू मुझे उठा करके खड़ा कर देगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मेरे खातिर अपनी जान देगा मैं उसको उठा लूंगा।
So I'll go with him.
और अब आप लोग जो इससे बहुत ज्यादा ताल्लुक रख रहे हैं, आपके दिलों में जबकि कार्य हुआ है, मैं चाहता हूँ मेहरबानी से अपने हाथ खड़े कर दीजिए, अपना दिल उसकी ओर लगा लीजिए।
touch us now. Heal these sick and afflicted, Lord. Grant it, Lord. Give them healing, Lord. You feel good now?
Amen.
Feel it's all ready now.
Amen.
If he's the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. That's that last trumpet now. And when the morning breaks eternal,
आइए हम एक साथ अब मिलकर इस गीत को गाएंगे जबकि खुदावन की तुरही फूंकी जाएगी. मेहरबानी से जरा नोट दें थोड़ा सा.
When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be
हम सब एक साथ अपने हाथ खड़े करें और बोले खुदावन की मेहरबानी के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी के द्वारा से. और हम सब भाई और बहन लोग जो मसीह में पाए जाते हैं, एक दूसरे से जो हमारे बराबर में खड़े हुए हैं, आइए एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहें खुदावन की मेहरबानी से जब रोल कॉल होगा मैं वहां पर पाया जाऊंगा. बढ़िया समय होगा. किसी दिन हम लोग ऐसे चलते ही चलते हमारे बीच में कोई प्रकट होगा. हम पूछेंगे कौन माँ है ये. ए मैन कितना ही बढ़िया समय है. ये जल्दी अब आने वाला है. कुछ ही मिनटों की बात है. हम एकदम से बदल जाएंगे और हमेशा के लिए वहाँ पर चले जाएंगे ताकि एक साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में रहें. और इस समय झपकते ही क्या होगा. यहाँ पर भाई सीवर्ड हैं. हमारे वही पुराने भाई थे. कलीसिया में आया जाया करते थे. भाई डीआर थे और बहुत सारे भाई हैं. और हम एक दूसरे को यहाँ देखते देखते क्या देखेंगे. एक थोड़े से मिनट के समय में तरह सी पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाएंगे. और ये बहुत लंबे अरसे तक वाली बात नहीं है. पूरी की पूरी कलीसिया बदलने वाली है. पलक झपकते ही क्षण मात्र में ही हम यहाँ से सब के सब चले जाएंगे. और बिल्कुल एक दिन ऐसा होगा कि हमारी सुबह जो है बड़ी खुशनुमा रोशनी में बदल जाएगी. और जैसे इसराइल के बारे में कहा गया है तो सुबह की ओस के समान है, सुबह की बादल के समान है. और तेरी धार्मिकता जैसे धीरे धीरे घटती चली जाती है. एक दिन क्या होगा सूरज की रोशनी में जो इस सब को थामे हुए है ये बदल जाएगा. और जब एक बार फिर से रोल कॉल होगा मैं वहाँ पर पाया जाऊंगा.
don't know what time this will take place, friends. It's been a story a long time, but it's the truth. And it will happen right the time now. By God's grace, we hope it's 7:30 tonight.
और खुदावंत की मेहरबानी से हम उम्मीद करते हैं 7:30 आज रात को जमा होंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने पैरों पर। कितना ही बढ़िया समय ये रहा है, ये तो स्वर्गीय स्थानों में हम यीशु मसीह के साथ रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैं कितना शिकार करना पसंद करता हूँ, मैं मछली पकड़ना कितना पसंद करता हूँ। इसका कारण है कि मैं वहाँ जंगल में खुदावंत को देखता हूँ, मैं उसे बहुत ज्यादा चाहत और प्यार करता हूँ। और एक ही मिनट लगने वाला है जिसमें कि हम सब चेंज हो जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस जो हमको इस समय हुआ है, सैकड़ों सालों में भी ऐसा नहीं हो पाता है। एक मिनट का जो तजुर्बा है वो सारे जीवन को तसल्ली और शांति से भर देता है। खुदावंत, तू मेरे अंदर एक जागृति पैदा कर दे ताकि मैं जागृत हो जाऊं। हमें से हर एक भाई और बहन जागृत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरी तुझसे प्रार्थना, मेरे अंदर ऐसी भूख और प्यास पैदा कर दे। मेरे अंदर प्रभु नए सिरे से ऐसा आत्मा उत्पन्न कर दे कि जिस चीज की मुझको आवश्यकता है इस समय घड़ी में जो तेरी ओर से है वो मेरे अंदर पैदा हो जाए, ताकि मैं और ज्यादा समर्पित तेरा दास होने के नाते से तेरी और अच्छी सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकूं। प्रभु, मैं तेरी ओर से और ज्यादा आशीषित हो जाऊं, मैं और ज्यादा तेरी ओर से योग्य बन जाऊं, मैं और ज्यादा दीन हो जाऊं, मैं और ज्यादा नम्र हो जाऊं और तेरी सेवा करने के लिए और ज्यादा तैयार हो जाऊं। और मैं तेरी ओर निगाह उठाकर देखता रहूं और जो अच्छी बातें हैं उन्हीं की ओर बढ़ता चला जाऊं और जो बुरी बातें हैं उनको पीछे छोड़ता हुआ चला जाऊं। और मैं अपने बुराई जाने की ओर, अपने निशाने की ओर जो मसीह यीशु में पाया जाता है, आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊं। और हमारे दिल की ख्वाहिश यही है। और जब तक आज रात में हम मुलाकात नहीं करते दोबारा से, आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उस यीशु मसीह के नाम को लेकर एक साथ चलें।
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather,